वासुदेवाया नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतावदाधर वासरि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 अधिक मास के हरिकथा सप्ताह के आज के दूसरे दिन में आप सबका स्वागत है। आज 19 अगस्त है, रविवार का दिन है और अधिक मास की आज द्वितीया है। तो कल हमने अधिक मास के महात्म्य के बारे में चर्चा की और अधिक मास के व्रत के पालन में पुरुषोत्तम व्रत के पालन में श्रीमद् भागवत यानी हरिकथा का जो श्रवण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। तो आज हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत ये कोई साधारण शास्त्र नहीं है, ये दिव्य शास्त्र। तो आज का जो वर्णन है वो शुरू होता है ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के निर्माण से। आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के अवतारों के अवतारों के अवतार महाविष्णु है, बहुत सारे बीच में अवतार रहेंगे और महाविष्णु इस भौतिक जगत के प्रमुख हैं और महाविष्णु के रोम रोम के द्वारा अनंत ब्रह्मांड निर्माण होते हैं और हरेक ब्रह्मांड में एक गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं और इस हरेक गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल उठता है और उस कमल में ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और किसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के चार मुख होते हैं जहां पर चार दिशाएं होती हैं और चार से लेकर हजारों लाखों और करोड़ों शीश भी उनके होते हैं। हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा ब्रह्मांड जो है वो चार प्रमुख दिशाओं से बना है, इसलिए हमें चार तक समझ में आएगा, 10 तक समझ में आएगा, 15 तक समझ में आएगा, लेकिन हजारों और लाखों और करोड़ों दिशाओं को हम समझ नहीं सकते। फिर भी शास्त्र में लिखा है कि ऐसे अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांडों में अलग अलग प्रकार के ब्रह्माओं का जन्म होता है और ब्रह्मा जी जब जन्म लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारा ब्रह्मांड है उसको आप विचार में लीजिए, टेक इनटू कंसिडरेशन अवर ब्रह्मांड अवर यूनिवर्स, तो हमारे ब्रह्मा जी चार मुख वाले हैं, तो यहाँ पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार प्रमुख दिशाएं हैं, आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य ये सेकेंडरी दिशाएं हैं, और ऊपर और नीचे ये और तृतीय दिशाएं, तो दस दिशाएं हो, लेकिन ब्रह्मा जी हमारे चार प्रमुख दिशाओं की ओर चार मुख से निहारते रहते हैं। जब उनका जन्म होता है तब वो अंधकार में होते हैं, उनको पता ही चलता नहीं कि किसने जन्म उनका हुआ है, क्या उनका कार्य है। तो वो जो कमल के बीच में उनका जन्म होता है उसकी एक लंबा होता है डेट, क्या होता है उसको, स्टॉक डंडी, जिसमें सब लोगों का निर्माण भगवान ने किया। सबसे नीचे छह पाताल लोक, नरक लोक, बीच में पृथ्वी लोक, और ऊपर सात स्वर्ग लोकों का निर्माण किया गया है, और सातवें स्वर्ग लोक यानी ब्रह्म लोक के बीच में उनका जन्म होता है। तो सभी लोगों की यात्रा करते हैं, ढूंढते हैं, समझ में नहीं आता है, उसके बाद ध्यान लगाते हैं, तो भगवान गर्भोदकशायी विष्णु उनके हृदय में चतुश्लोकी भागवत का उच्चारण करते हैं, यहां से भागवत का निर्माण शुरू होता है। इतना दिव्य शास्त्र है ये, सबसे पहले बताया गया ज्ञान जब हमारे सृष्टि के निर्माण करता रचयिता भगवान के आदेश में उसका निर्माण करते हैं, लेकिन वो सबसे पहले इंजीनियर है, उनके हृदय में उनकी सेवा के लिए जो ज्ञान प्राप्त होता है वो है चतुश्लोकी भागवत। ये भागवत जो है केवल चार श्लोक का था पहले, फिर ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश के अनुसार सर्ग और उपसर्ग, मतलब प्राइमरी क्रिएशन और सेकेंडरी क्रिएशन, प्राथमिक निर्माण और प्राथमिक सृजन और द्वितीय सृजन और निर्माण करते हैं, और उसके बाद में प्रजा उत्पादन शुरू होता है। लोगों के उत्पादन तो भगवान ने कर दिया था, प्रजा उत्पादन जो है वो ब्रह्मा जी शुरू करते हैं। सबसे पहले नारद जी को जन्म देते हैं, नारद जी भगवान के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं बिना माता के, और उसके बाद में व्यासदेव का जन्म होता है। तो व्यासदेव का जन्म जो है, व्यासदेव भगवान के जो छह ऐश्वर्य हैं उसमें से एक प्रधान ऐश्वर्य है ज्ञान, भगवान के पास अनंत ज्ञान है, और व्यासदेव जी भगवान के जो पूर्ण ज्ञान है अनंत ज्ञान है उसका अवतार है, ज्ञान अवतार है, इनकार्नेशन ऑफ नॉलेज। पराशर मुनि जिन्होंने भगवान की व्याख्या की है ये षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, और पराशर संहिता का लेखन भी किया है, पराशर मुनि जो सत्यवती है मत्स्य कन्या, सत्यवती और पराशर मुनि और नदी के बीच में संबंध होता है, बहुत योग सिद्धि के द्वारा उनका संबंध होता है, और उस दिव्य संबंध के कारण व्यासदेव का जन्म होता है। व्यासदेव को साधारण जीव नहीं है, त्रिकालदर्शी है व्यासदेव। तो व्यासदेव जी इनका जो निर्माण है वो महाभारत के जन्म जो है वो तो पुरातन है, लेकिन सत्यवृत्ति और पराशर भूमि के द्वारा उनका जो अवतीर्णता है अवतार होने का जो समय है वो जस्ट कलयुग के पहले है, द्वापर के अंत में। तो द्वापर के अंत में जब वो जन्म लेते हैं तो देखते हैं अपने ध्यान में कि कलयुग के लोग बहुत पतित होंगे, कलयुग के लोगों को स्मृति नहीं होगी, याद नहीं रहेगा, कलयुग के लोग झगड़ालू होंगे, कोई भगवान के प्रति उनको आकर्षण नहीं होगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई सत् प्रवृत्ति नहीं होगी, अच्छे गुण नहीं होंगे, इस प्रकार के सभी प्रकार के सत्य दर्शन व्यास जी ने करते हैं, और उनको एक संत होने के नाते बहुत मन में करुणा होती है कि कैसे होगा इनका, अब तक तो लोग श्रुति धरते, इसका मतलब जो कुछ कहा जाएगा वो सुनेंगे कान में और वही धारण करेंगे, श्रुति धर, तो श्रुति को यथा तथा धारण करते हैं और सब कुछ याद रखते, कोई लिखने की जरूरत नहीं। पुराने जमाने में साधु लोग जो थे गुरु महाराज पेड़ के नीचे बैठकर गुरुकुल चलाते थे, और जो भी बोलते थे सभी शिष्यगण केवल सुनकर उसको याद करते, फिर अपने शिष्यों को बताते थे। इस तरह से ध्वनि के माध्यम से ज्ञान जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ता, लेकिन व्यास जी ने देखा कि आगे किसी को याद नहीं रहने वाला, आपको याद रहता है कल मैंने पूछा था ना कि कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या कह रहा है, थोड़ा सा दिमाग आपको खजाना पड़ेगा उसके लिए। तो ज्ञान की बात तो दूरी रहेगी, बार बार रेफर करना पड़ता है, हमने भी ये पढ़ाई बहुत पहले बार की है, लेकिन फिर भी रिवाइज करना होता है, क्योंकि स्मृति हमारी कलयुग की है। ये देखकर व्यास जी ने सोचा कि जितना भी ज्ञान है वो सब हम लिखेंगे। नारद मुनि ने उनको आदेश दिया कि सब ज्ञान को कागज में उतारो, लिपि में उतारो, स्क्रिप्ट में उतारो। तो व्यास देव जी बैठे, उनका जो आश्रम है वो हिमालय के अंदर है, जहां हम जाते हैं ना बद्री का आश्रम, वो तो बहुत नीचे है, एक ऐसे एरिया है जहां पर मनुष्य पहुंच नहीं सकता है। वो बद्री का आश्रम हमारे पहुंच के बाहर है, वहां पर व्यासदेव जी का आश्रम, वहां पर जो नदी है सरस्वती वहां बैठी है, उसके किनारे उनका आश्रम है, और वहां बैठकर वो लिखना आरंभ करते। तो उन्होंने जो ज्ञान है पूरा लिख डाला। ज्ञान का मतलब वेद, वेद का अर्थ है ज्ञान। तो उन्होंने एक वेद लिखा, लेकिन उसको समझ में आया कि इतना एक ही लिखेंगे तो सबके समझ में नहीं आएगा, तो उन्होंने चार में डिवाइड कर दिया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और हाँ ऋग्वेद, सबसे बड़ा ऋग्वेद, बाद में अथर्ववेद, फिर यजुर्वेद और सामवेद। तो ये चार वेद लिखे और चार अपने शिष्यों को वो ज्ञान प्रचार करने के लिए उनको ये ज्ञान सौंप दिया कि अभी आपके जिम्मे ये वेद है, इसका आगे प्रचार करना परंपरा और पीढ़ी में आपका कर्तव्य है। और पांचवें वेद के रूप में उन्होंने इतिहास लिखा और पुराण लिखे, एंशियंट हिस्ट्रीज, वो उन्होंने रोम हर्षण सूत नाम के साधु को सौंप दिया। उसके बाद में उन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखे, और ब्रह्म सूत्र के बाद में उन्होंने महाभारत जैसे महान शास्त्र का निर्माण किया। महाभारत इसलिए निर्माण किया कि जो कम बुद्धि वाले हैं, जिनको रुचि नहीं है, उनको कहानी के रूप में सारा बोध मिल जाए, इसलिए उन्होंने महाभारत लिखा। और इतना सारा शास्त्र का विशाल शास्त्र है, मैंने आपको संक्षेप में बता दिया, लेकिन ये विशाल अथाह सागर की तरह शास्त्र है, ज्ञान है, जिस पर राज्य ने लिखा। और गुरु महाराज की आज्ञा पालन करने के बाद हमेशा एक संतृप्ति होती है, समाधान प्राप्त होता है। अगर आप गुरु महाराज को ले चुके हैं, शिक्षा ले चुके हैं, और गुरु महाराज ने आपको आज्ञा दिया है, विशेष आज्ञा, सामान्य आज्ञा तो है 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, शास्त्र का अध्ययन करना है, संतों का संग करना है, धाम में जाकर निवास करना है, भगवान की सेवा करनी है, ये सामान्य आज्ञा है। उसके ऊपर जाकर कोई विशेष आज्ञा प्राप्त होती है तो वो विशेष आज्ञा और सामान्य आज्ञा दोनों को पालन करने के पश्चात एक अनोखा समाधान मन में प्रकट होता है। मन में प्रकट होता है जिससे कि शिष्य को अनुभूति होती है कि मैंने आज्ञा ठीक से पालन की। तो इस तरह से इतना सारा गुरु जी का आज्ञा पालन करने का प्रयास करने के बाद भी व्यास मुनि को समाधान नहीं हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो व्यास देव जी नदी किनारे आकर बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं कि मैंने कहां गलती की, सोच ही रहे हैं कि मैंने सेवा को करने में कहां पर दोष त्रुटि किया। तो उतने में वहां पर नारद मुनि जो गुरु महाराज जो है वहां प्रकट होते हैं, वीणा बजाते हुए आकाश से अवतीर्ण होते हैं सरस्वती नदी के किनारे, और पूछते हैं आप तो ज्ञान के अवतार हो, आपने इतने बड़े बड़े शास्त्रों का निर्माण किया, फिर भी आपके मन में बेचैनी कैसी। थोड़ा सा शिष्य का मजाक है, और फिर रास्ते पूछते हैं कि जरूर ही मेरी सेवा करने में कोई गलती होगी। तो फिर अपने शिष्य को थोड़ा सा कठोर उपदेश करते हैं रास्ते, मैं उपदेश आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के दिखाऊंगा। भगवान कहते हैं कि तुमने वेद के रूप में केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष इसका वर्णन किया है, और इसको द्वितीय दर्जे का ज्ञान माना जाता है, लोग तो उसको ही परिपूर्ण ज्ञान समझते हैं। धर्म यानी जो भी हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं, रिलीजियस ड्यूटीज हैं, वो क्या है, एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक राजा के रूप में, एक स्त्री के रूप में, एक पुरुष के रूप में, हाँ, एक ब्राह्मण के रूप में, एक क्षत्रिय के रूप में, वैश्य के रूप में, शूद्र के रूप में, हर प्रकार के जो हमारे धार्मिक कर्तव्य है उसका वर्णन धर्म है। अर्थ का वर्णन यह है कि किस तरह से धन अर्जन किया जाए, उसका भी वर्णन शास्त्र में दिया है, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स उसका भी वर्णन दिया है, धनुर्विद्या, राज विद्या, राजनीति, सबका वर्णन शास्त्र में दिया। तो ये है अर्थ, यानी कि अर्थ कैसे प्राप्त किया जाए, प्रॉपर्टी, धन, फिर काम, यानी धर्म का पालन करके अर्थ को प्राप्त करके कैसे इंद्रियों का भोग किया जाए, और उसके बाद में इंद्रियों का भोग करके मन तृप्त हो गया, तृष्ट हो गया, तो मोक्ष की इच्छा होती है। बहुत सारा काम हो गया तो फिर विरक्ति आ जाती है। तो इस तरह से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का आपने वर्णन किया है। वो कहते हैं कि ये द्वियम दर्जे का वर्णन है। आपने भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन किया है, और वो कहते हैं कि जो शास्त्र भगवान का गौरव नहीं करता है वो कौओं का तीर्थ है, यानी काक तीर्थ है। काक तीर्थ का मतलब आप देखते हैं सुबह कचरे के डब्बा के सामने सब कौवे आते हैं, काव 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 करके उसको खाते हैं सब, उसको काक तीर्थ कहा गया। मतलब जो बहुत गंदगी वस्तु होती है वहां पर जो इकट्ठा होते हैं उनको कौवा कहा गया है, और वो जगह को काक तीर्थ कहा गया है। तो कहते हैं आपका शास्त्र जो है वो काक तीर्थ की तरह है, क्योंकि यहां पर इसमें भगवान का वर्णन नहीं किया, इसलिए भोग का वर्णन किया गया। और दूसरी जगह बताया गया है कि अगर आपने, अगर किसी ने कोई अपरिपूर्ण शास्त्र का निर्माण भी किया है, मतलब इम्परफेक्ट कुछ लिखा है, लेकिन अगर वो भगवान का गौरव के रूप में है तो भी साधु लोग उसको बड़े प्रेम से उसका ग्रहण करते हैं, उसको आनंद लेते हैं। तो ये जरूर नहीं कि बहुत शास्त्रीय दृष्टि से, संस्कृत की दृष्टि से परिपूर्ण छंद और रुचाओं में उसका वर्णन किया जाए तो ही वो परिपूर्ण है। नहीं, भगवान का गौरव अगर अपरिपूर्ण तरीके से भी किया जाए तो भी वो सेव ही होता है, यानी कि इट इज रिलिशेबल बाय ग्रेट एडवांस स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज। आगे कहते हैं कि आपका जो तथा कथित सो कॉल्ड स्पिरिचुअल नॉलेज, अगर ये भगवान के व्यक्तित्व के बारे में वर्णन नहीं करता है तो वो अपूर्ण है। और कर्मकांड के बारे में क्या कहूं, नारद मुनि कह रहे हैं कर्मकांड तो केवल टेम्पररी फल देता है, और क्या करता है, अपने आप को दुख देता है। क्यों? अगर हमको कोई सुख मिला, आज कोई काम किया उसके परिणाम में सुख मिला, तो कल हमको उसी सुख की आदत हो जाएगी, और जब वो कल नहीं मिलेगा तो दुख हो जाएगा। इसलिए सुख जो है वो दुख का मूल कारण है। जैसे समझो हमने अभी दो बेडरूम के फ्लैट में से तीन बेडरूम के फ्लैट में, फिर आगे जाके आर्थिक संकट आया, हमको उसको बेच के दो बेडरूम के घर में आना पड़ेगा, तो तब सुख होगा कि दुख होगा? आप पहले दो बेडरूम के घर में बहुत बार रह चुके हो, बहुत समय तक रह चुके हो, बचपन से रह चुके हो, जो लास्ट पांच साल आप तीन बेडरूम के हॉल में गए, घर में गए, और हो सकता है कोई आर्थिक संकट की वजह से आपको दोबारा उसको बेच के वो बेडरूम में आना पड़ेगा, आपको दुख होगा कि नहीं होगा? तो पहले जो सुख का कारण था वो अभी दुख का कारण बना, वही स्थिति है, लेकिन आपको अगले वाले मतलब ऊपर वाले आनंद के सुख की आदत पड़ गई, तो फिर वही आनंद जो पहले लिया था वो दुख का कारण बन जाता। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि कर्मकांड से, पुण्य कर्म करने से जो आनंद मिलता है उससे बाद में दुख ही प्राप्त होता है, और वो सुख और दुख दोनों टेम्पररी होते हैं। आपने उनको कहते हैं कि आपने ये सब जो भगवान का वर्णन किया है, ये एक भगवान को ये शास्त्र का जो वर्णन किया है तो भगवान को अलग रख के किया है, भगवान कैसे वर्णन नहीं किया है, और इस तरह से आपने इंद्रियों का भोग करने के लिए लोगों को प्रवृत्त किया है। इसका मतलब वेदों का ज्ञान जो है केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए है, इसमें आध्यात्मिक उन्नति का ज्यादा गुंजाइश नहीं है। इसलिए आपने जो भी कुछ लिखा है हे व्यास मुनि, वो निंदा के योग्य है। जिस शास्त्र में भगवान के गौरव का वर्णन नहीं होता है वो यूजलेस शास्त्र है। इसलिए हे नारद, हे व्यास मुनि, अभी आपको भगवान के बारे में लिखना होगा। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम के बारे में वर्णन करना होगा। इस तरह से नारद मुनि थोड़ा सा डांट के व्यास मुनि को बोल देते हैं। उसके बाद में व्यास मुनि ने श्रीमद् भागवत का लिखा। तो ये इस तरह से श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति हुई है। समाधान प्राप्त करके, आदेश प्राप्त करके, विवरण प्राप्त करके, एक्सप्लेनेशन प्राप्त करके व्यास मुनि फिर आश्रम में चले गए और ध्यान लगाया उन्होंने, और नारद मुनि गुरु महाराज की कृपा से उनके हृदय में चतुश्लोकी भागवत प्रकट हो गया, और उसको व्यास मुनि ने फिर एक्सपांड किया। चार श्लोकों को भगवान व्यास मुनि ने 18,000 श्लोकों में एक्सप्लेन किया। 12 स्कंदों में 335 अध्याय में 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। और जब ये श्रीमद् भागवत का निर्माण पूरा हुआ तो व्यास मुनि ने पूरी संतुष्टि प्राप्त की। इसलिए कहा गया कि अगर वेद को अगर हम पेड़ मानते हैं, इसके अनेक शाखाएं हैं, अनेक ब्रांचेस है, नॉलेज इज मेनी ब्रांच, और उसका सबसे आखिरी और सबसे परिपक्व फल जो है वो श्रीमद् भागवत है, और मनुष्य जीवन का परमोच्च सार जो है वो श्रीमद् भागवत में दिया गया, और इसको लिखने के बाद में व्यासदेव जी पूर्णता संतुष्टि प्राप्त कर गए। ये जो श्रीमद् भागवत है ये कई जगह पर कहा गया है, जैसे सबसे पहले नारद मुनि की कृपा से व्यास मुनि ने उसको लिखा, प्रकट हो गया वो ब्रह्मा जी के हृदय में। पहले विष्णु भगवान ने प्रकट किया, विष्णु ने नारद मुनि को बताया, नारद मुनि ने व्यासदेव जी को प्रेरणा दी और व्यासदेव ने उसका विस्तार किया। भगवान शिव को भी ब्रह्मा जी ने बताया, ब्रह्मा जी शिव जी ब्रह्मा जी के अनारोस पुत्र हैं, जब उनको क्रोध हुआ तो उनके भ्रुकुटी मध्य से शिव जी का जन्म हुआ है। तो शिव जी बड़े महाजन हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनसे संप्रदाय निकलता है, शिव संप्रदाय। तो शिव जी एक बार अपने पत्नी को श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, तो कुछ देर बाद में पार्वती जी जो है वो सो गई। कथा में सोते ना, बहुत कॉमन चीज है ये, बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं कथा में सोना। तो पार्वती जी को समय सो जाती है, लेकिन शिवजी महाराज जो है वो बड़े मग्न होकर आंख बंद करके ऐसे सुना रहे थे, एकदम कंप्लीटली एब्सॉर्ब, और आगे से आवाज आ रही थी, हाँ हाँ हाँ, मतलब एक्नोलेजमेंट, स्वीकृति हो रही है, और आंख बंद करके वो बोलते जा रहे। बीच में अचानक आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि पत्नी सो रही है और हाँ हाँ की आवाज चल रही है। तो कौन सुन रहा है उसको, देखते यहां वहां तो एक पेड़ पर एक तोता को देखते हैं और वो हाँ हाँ कर रहा है, पार्वती जी सो रही है और वो हाँ हाँ कर रहा है। तो शिव जी त्रिशूल निकालते हैं और उस पंछी के पीछे भागते हैं, पंछी उड़ जाता है, पूरे ब्रह्मांड में घूमता है पंछी, घूमते 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 वहां पहुंच जाते हैं जहां व्यासदेव जी अपनी पत्नी जाबली, जो पत्नी की पत्नी है उनका नाम जाबली है, उस पत्नी को भक्तों के समुदाय में व्यासदेव जी भागवत सुना रहे हैं, और व्यासदेव जी सुना रहे हैं जो निर्माण करता है भगवान के, इतने प्रेम से सुना रहे हैं, भक्ति भाव से सुना रहे हैं। तो जाबली देवी बड़ी मग्न होकर सुन रही है और उसका मुंह ऐसा खुला हुआ है। तो पंछी जो है वो तोता जो है शुक्र सब जगह उड़ते 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 उसके मुंह में घुस जाता है और उसके मुंह से सुखी प्रवेश करता है। तो शिव जी हंस पड़ते हैं और फिर भागवत कथा चलती रहती है। तो शुकदेव भी कौन है, ये राधा रानी के तोता है, राधा रानी के बहुत सारे तोता है, उसके प्रधान शुक तोता जो है वो शुक है, और वही शुकदेव गोस्वामी के रूप में व्यासदेव की पत्नी के गर्भ से प्रकट होते हैं। लेकिन जब गर्भ में जाते हैं तो पूरा भागवत सुन लेते हैं एक बार, 12 साल तक बाहर नहीं आते, व्यासदेव परेशान हो जाते, बहुत विनती करते हैं उसको, आ जाओ आ जाओ, तो कहते मुझे भौतिक दुनिया में जन्म लेकर माया में नहीं फंसना है, ये माया की नगरी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि आत्मिक आदि दैविक क्लेश यहाँ पर है, सब लोग भौतिक इच्छाओं में लिप्त हैं और त्रस्त हैं, कष्ट भोग रहे हैं, मुझे यहाँ पर बाहर नहीं निकलना है। तो फिर व्यासदेव द्वारका में जाते हैं और कृष्ण भगवान को लेके आते हैं और कृष्ण भगवान वादा करते हैं उनको, डोंट वरी, मैं आपको वादा करता हूँ आपको माया लिप्त नहीं करेगी, आप हमेशा माया मुक्त रहोगे। तब वो बाहर आते हैं और बाहर आते ही सीधे चले जाते हैं। ये सब दिव्य जन्म है, ये हमारे जैसा मैटरनिटी होम सिजेरियन कॉर्ड अराउंड द नेक ऐसा कुछ नहीं है इसके, ये दिव्य जन्म है, जैसे भगवान का जन्म होता है ना तो दिव्य है, हमारे जैसे माता पिता का संबंध हो गए फिर योनि मार्ग से ऐसा जन्म नहीं होता है, ये सब दिव्य है। ब्रह्मा जी का जन्म, नारद मुनि का जन्म, व्यास मुनि का जन्म, पराशर और सत्यवती के द्वारा उनका पुत्र सुखदेव, ये सब दिव्य जन्म है, डिवाइन बर्थ्स। तो चलने लगते हैं तो व्यासदेव भागते हैं उनके पीछे पीछे, अरे शुक्रदेव तुम कहाँ जा रहे हो, लौट के आओ। लेकिन वो जाते रहते हैं, उनको कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, परिवार का नहीं, ना माता पिता का है, ना दुनिया का है, सीधे चले जाते हैं। जब आगे जाते हैं तो रास्ते में कुछ जवान छोटे छोटे बालक जो है वो वासुदेव के शिष्य होते हैं और वो गुरु महाराज की आज्ञा से लकड़ी तोड़ रहे हैं, गुरु महाराज की सेवा में गुरुकुल में, और लकड़ी तोड़ते हुए दशम स्कंद के बहुत सुंदर कृष्ण भगवान के वर्णन के श्लोक पढ़ रहे हैं। मरहा पीड़म बपू नटवर बपू, जैसे कृष्ण और बलराम दोनों वृंदावन के वनों में बांसुरी बजाते हुए गाय चराते हुए चल रहे हैं, उनकी सामने सी आभा है, उनके सर पे मोर पंख है और वो नटवर बपू हैं और नृत्य करने में नटराज है, वो बहुत सुंदर गति से वो चल रहे हैं, सब पेड़ पौधे उनके आनंद के लिए उनके स्वागत के लिए झुक रहे हैं, बहुत सुंदर वातावरण। ऐसा एक श्लोक है, दो श्लोक है, वो दो श्लोक को ऐसे ही लकड़ी तोड़ते तोड़ते बहुत कुशलता से गा रहे हैं तो ये रुक जाते भगवान का वो सुंदर वर्णन सुनकर वो रुक जाते और उनसे पूछते आप कौन हो, ये कहां से सिखा आपने, तो कहते हमारे गुरु महाराज ने हमको सिखाया, तो बोले मुझे आपके गुरु महाराज के पास लेके चलो, मुझे अभी पूरा शास्त्र सीखना है। तो वो बालक है वो घुमा के फिरा के उनको कहां लेके आते हैं, अपने घर में लेके आते हैं व्यासदेव जी, और ये तो मेरे पिताजी है, तो यही हमारे गुरु हैं, इन्होंने हमको ये भागवत सिखाया। तो फिर दोबारा सुखदेव जी व्यासदेव से पूरा भागवत सीखते, व्यासदेव जी के मुख से बड़े प्रेम से वो श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और फिर ग्रस्त होकर निकल जाते। इसके बाद में और व्यास सुखदेव जी का और एक वर्णन ऐसा आता है कि उनका रंग कृष्ण भगवान के जैसे था, सांवला नीला रंग था, दिखने में बहुत सुंदर थे वो, 16 वर्ष की उनकी परमानेंट आयु थी, उसके ऊपर बड़े नहीं, दिव्य शरीर था उनका, दिव्य आध्यात्मिक देह था और भगवान के प्रेम में रत थे वो, ब्रह्मवादी थे पहले जन्म के पहले और दो श्लोक सुनने के पश्चात भगवान के भक्त बन गए, श्रीमद् भगवत का अध्ययन करने के बाद में शुद्ध भक्त बन गए, प्रेमी भक्त बन गए, भगवान की कृष्ण प्रेम के अंदर व्रत हो गए, फिर चले गए तपस्या करने के लिए। यहां पर परीक्षित का जन्म होता है, बड़ी लंबी लंबी कथाएं आपको संक्षेप में बताएंगे। तो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा और अभिमन्यु और उत्तरा के द्वारा परीक्षित का जन्म होता है। आप जानते हैं जब परीक्षित गर्भ में थे उससे पहले ही अभिमन्यु का वध होता है, महाभारत युद्ध में अभिमन्यु मर जाते हैं। तो जवान 16 साल के थे वो, उनकी पत्नी को 10-12 साल की थी, लेकिन पेट में परीक्षित जी ऑलरेडी आ चुके थे। तो परीक्षित जी जब पेट में थे, महाभारत का युद्ध खत्म होता है और अश्वत्थामा जो है वो द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मारा, गुस्से से, द्वेष से, बदले की भावना से, क्रूर भावना से, तंबू में युद्ध होने के बाद रात को सोते हुए सभी लोगों का शरीर छेद किया जाता है और चुन चुन कर द्रौपदी के 5 बच्चों को मारा जाता है अश्वत्थामा के द्वारा। तो अर्जुन जो है व्रत निकाल के कृष्ण को सारथी के रूप में लेकर उसका पीछा करते और उसको पकड़ते हैं, उसको पकड़ने के पहले वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, आखिरी मतलब डेस्परेट कंडीशन है, मैं मरने वाला हूं तो सबका नाश करके मर जाऊं। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं कि क्या है ये सब, बहुत प्रकाश दिखाई पड़ रहा है अर्जुन, बहुत जलन हो रही है अग्नि, जैसे पीठ बढ़ रही है, सब जगह उष्णता बढ़ रही है। भगवान कहते हैं कि अश्वत्थामा ने विश्व के नाश के लिए तुम्हारी ओर ब्रह्मास्त्र फेंका है, इसका एक ही उपाय है, तुमको ब्रह्मास्त्र फेंकना पड़ेगा। तो जल स्पर्श करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं और ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में एकत्र हो जाते हैं। फिर भगवान उसको और अर्जुन जी उसको दोनों को वापस खींच लेते हैं और विश्व के नाश को बचाते हैं और आगे जाकर अश्वत्थामा को पकड़ते हैं, अरेस्ट करके द्रौपदी के पास तंबू में लेके आते हैं और उनको मारने वाले थे, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि उसका सर मैं काटूंगा, उसके सर पे खड़े रहकर तुमको स्नान करना है, जब हम अपने पुत्रों का तर्पण करेंगे मतलब स्नान का समय आएगा तो इसके कटे हुए सर पर खड़े होकर आप स्नान करोगे, ऐसा मतलब ये क्षत्रियों की भाषा है। लेकिन द्रौपदी कहती है कि नहीं, ये ब्राह्मण पुत्र है, इसका हमको वध नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जिसने अपने 5 पुत्रों का वध किया है उसको अरेस्ट करके लाते ही द्रौपदी दंडवत प्रणाम कर दिए, क्योंकि हमारे गुरु का पुत्र है, हमारे लिए वंदनीय है, केवल साधारण ब्राह्मण नहीं है, हमारे गुरु जो है द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण है उनके शिष्य उनके पुत्र है, ये वंदनीय है हमारे लिए। एक कारण है कि हम नहीं मारेंगे उसका, दूसरा कारण यह है कि मुझे मेरे पांच पुत्रों को खोकर जो दुख हुआ है वो मैं अश्वत्थामा की जो माता है कृपी, जो कृपाचार्य की बहन है कृपी, उसको वो दुख मैं देना नहीं चाहती, इसलिए ब्राह्मण को मुक्त किया जाए। युधिष्ठिर महाराज इस बात को मानते हैं क्योंकि वो बहुत स्थिर बनते हैं, लेकिन भीमसेन जो है वो कहते नहीं इसको अभी मारा जाए, यू मस्ट किल हिम, और कृष्ण भगवान भी कहते हैं इनको दंड देना चाहिए। तो अर्जुन को आदेश देते हैं देखो माता की बात भी रखनी है भीम की बात भी रखनी है, ऐसा कुछ उपाय निकालो कि दोनों का मन रह जाए। तो अर्जुन भगवान की जो मंतव्य है वो समझ जाते हैं, तो तलवार से अश्वत्थामा के सब बाल काट देते हैं, मतलब अपमान कर देते हैं, और जो अश्वत्थामा के सर पे जो दिव्य मणि था जिसके वजह से उसको दिव्य शक्तियां प्राप्त होती थी हो गई थी, वो मणि वो काट लेते पहले ही ब्रह्मास्त्र के छोड़ने से और पांच पुत्रों के सोते हुए वध करने से ऑलवेज निस्तेज हो चुका था, मणि के जाने के बाद और निस्तेज हो गया, उसका अपमान किया गया। तो क्षत्रियो के लिए है तो ब्राह्मण था वो, लेकिन क्षत्रिय का काम कर रहा था युद्ध में भाग कर रहा, तो उसके लिए अपमान यानी मृत्यु की भी बढ़कर होता है, उसको छोड़ दिया गया। और भगवान ने शाप भी दिया उसको कि तुम्हारे मणि निकालने के बाद जो जख्म होगी वो हमेशा बहती रहेगी, कभी सूखेगी नहीं, और अनंत दर्द होगा उसके अंदर, सृष्टि के अंत तक तुम जीवित रहोगे, मरोगे भी नहीं लेकिन दर्द में तड़पते रहोगे। छोटी सी कहानी आपको बता देता हूँ उसके संबंध में, अश्वत्थामा जी परेशान हो गए इतने दर्द में, इतने दर्द में, मतलब एक तो अपमान हुआ, एक तो इतना घिलौना काम किया दोस्त के लिए और दुर्योधन के लिए किया, दुर्योधन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि तुमने सही नहीं किया, तुम तो वीर हो, हम सब वीर हैं, तुमको युद्ध में मरना चाहिए, सोते हुए वीरों को मारना नहीं चाहिए, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो सोचा कि दुर्योधन के आनंद के लिए करूं, तो दुर्योधन ने उसको उत्तर दिया, सब जगह से सामाजिक दृष्टि से शारीरिक दृष्टि से मानसिक दृष्टि से सब जगह से अश्वत्थामा जो है एकदम घिलौना काम किया, तड़पते रहे वो। ब्रह्मा जी के पास गए, कुछ करो मेरे लिए बहुत दर्द हो रहा है, ब्रह्मा जी कहते हैं हम नहीं कर सकते, हमारे परम भगवान ने आपको श्राप दिया है, हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच। तो शिव जी के पास पहुंचते हैं, वो भी उनको ऐसे ही बोल देते हैं, सब देवताओं के पास जाते हैं, सब लोग उसको कहते हैं माफ करना हमने कुछ कर। तो वो साधु लोग बोलते हैं कि आप राधा रानी के पास जाओ, तो ये ब्रज में पहुंचते हैं, बरसाने के पास में गाँव है उसका नाम है पिपासा वन, पिपासा वन मतलब अपने मिलन की जो पिपासा मतलब जो तीव्र प्यास है उसको भगवान और राधा रानी सखियों के साथ वहां गोपी के साथ में रास लीला करके वहां पर अपना पिपासा यानी कि बहुत तृष्णा जो है वो शांत करते, बहुत सुंदर वन है पिसाया, उसको लोकल नाम पिसाया है, शास्त्र का नाम पिपासा वन है। तो इस पिपासा वन में जाकर वो राधा रानी की आराधना करते हैं और राधा रानी वहां प्रकट हो जाती है उसके भजन से और रोने से, और उसको स्पर्श करके उसका जख्म जो है वो सुखा देती, तुरंत दर्द नष्ट हो जाता है। अश्वत्थामा अभी भी जीवित हैं, लेकिन पिपासा वन में जो बरसाने से 5 किलोमीटर दूर है उस वन में रहते हैं और भजन करते रहते हैं। और ऐसे कहा गया है कि साधुगण है जो सिद्ध हो चुके हैं वो अश्वत्थामा का दर्शन आज भी करते हैं, और पिपासा वन से कोई भी लकड़ी काट के लेके जाता नहीं है, केवल भगवान के सेवा में भगवान के यज्ञ में भगवान के अनुष्ठान में कोई लकड़ी जरूरत होती है तो वो ले जाते हैं, जो बचती है वापस लाकर पिपासा वन में तोड़ के रखते लोग, और जो लोग बिना मतलब के वहां से लकड़ी लेके जाते हैं या तो उनको लकवा होता है पैरालिसिस या तो अंधे हो जाते हैं तो मर जाते हैं। आज भी लोग बड़े आदर से और डर के साथ में पिपासा वन के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो हम लोग यात्रा में उनको लेके, बहुत सुंदर वन है, वहां पर श्याम कुंड है राधा कुंड है, श्याम कुंड में भगवान ने राधा रानी को जल दिया था प्यास लगने पर, राधा कुंड में राधा ने कुंड बनाकर श्याम जी को कृष्ण भगवान को जल पिलाया था प्यास लगने पर, ऐसा सुंदर वातावरण। एनीवे तो अश्वत्थामा की बात निकली इसलिए मैंने आपको वो छोटी कहानी बता दी। तो कभी आप जाएंगे तो पिपासा वन में जघन्य पाप करने वाला जो अश्वत्थामा है उसको भी परम करुणामयी करुणेश्वरी कृपामयी राधा रानी माफ कर देती, हम भी वहां पर जा सकते हैं, हम भी कोई कम पापी नहीं है, हमारा रिकॉर्ड नहीं कहीं अश्वत्थामा की तरह। चित्रगुप्त ने रखा है सब रिकॉर्ड, वो मुक्त रूप में है, वो प्रकट नहीं हुआ शास्त्र में किधर। लेकिन हमें भी जाकर राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। तो एनीवे, तो ये अश्वत्थामा जो है, ये सब पश्चाताप और प्रार्थना करने के पहले उसकी द्वेष की भावना खत्म नहीं होती है। कितना अपमान किया, मेरे बाल काट लिए, मेरे मणि को निकाल दिया, तो वो और एक ब्रह्मास्त्र फेंकता है। कहां पर? उत्तरा के गर्भ की। वो देखो कितना दुष्ट होती है, कि पांडवों का वंश नष्ट हो जाए, और एक वंश अच्छा, पांच बच्चे तो मार दिए मैंने, उसके अगला वंश होने वाला था, वो तो खत्म हो गए। अभी उनका पुत्र का पुत्र जो है वो पेट में है, उसको खिलाफ ब्रह्मास्त्र भेजते हैं। कितना भय, जो विश्व को नाश करने वाला है, वो गर्भ को नाश करने के लिए बोलते। तो उत्तरा देखते कि मेरी और कुछ भयंकर शक्ति आ रही है मेरे गर्भ की, वो तो भाग के कृष्ण के पास जाती है। पांडव वीर होने पर भी, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, ये सब होने पर भी वो कृष्ण भगवान के कोख भाग जाती है। इससे हमको क्या सीख रहा है कि जीवन में अगर संकट आते हैं तो केवल एक ही रक्षक है, वो है श्री कृष्ण भगवान। कोई देवी देवता, कोई बलशाली रिश्तेदार, पति पत्नी, फ्रेंड्स, समाज के लोग, ये हमें सही मदद नहीं कर सकते। सही सहारा जो है वो एक ही है, बाकी सारे सहारे डूब जाते हैं समय के प्रभाव में। बड़े बड़े सहारे डूबते हुए नजर आते हैं, लेकिन समय के प्रभाव में एक सहारा नहीं डूबता है, वो है श्री कृष्ण भगवान। तो अपने पांच ससुर जी जो इतने विश्व के बलशाली थे, उनके होने पर भी वो कृष्ण भगवान के पास भाग जाती है, उनकी याचना करती है, और कृष्ण भगवान तत्क्षण, यहाँ पर कुंती देवी प्रार्थना कर रही है, भगवान द्वारका जाने को निकले हैं, और कुंती देवी बोल रही है मत जाना, जब तक आप थे, जब तक संकट था, तो संकट में आपकी याद करती थी, आपका दर्शन होता था, और संकट दूर होते थे। अभी आप जा रहे हो, सब कुछ ठीक हो रहा है, आनंद है राज्य में, तेरे पुत्र राजा बन गए, दुष्ट लोग खत्म हो गए, युद्ध खत्म हो गया, अभी आप द्वारका जा रहे हैं हमें छोड़कर, मत जाना। ऐसे प्रार्थना हो रही है एक जगह पर, और अचानक ये प्रार्थना उत्तरा के द्वारा होती है साथ साथ में, तो भगवान वहां पर प्रार्थना सुन रहे हैं दूसरे रूप में, अंगूठे जैसा इतना रूप धारण करके, इतना सा रूप धारण करके, जो चतुर्भुज है, पीताम्बर धारी है, शंख चक्र पद्म गदा धारी है, इतना सुंदर अंगुली मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते, और गदा घुमाकर ब्रह्मास्त्र को नष्ट करके बालक की रक्षा करते, और बालक भी गर्भ के अंदर इतने छोटे आकार के दिव्य भगवान का दर्शन करता है, प्रफुल्लित हो जाता है, देखता है कि मैं संकट में हूं, मरने वाला हूं, और ब्रह्मास्त्र मेरे सामने परम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर नष्ट कर देते हैं, ये सब बालक अंदर देखता है, और फिर अंतर्धान हो जाते भगवान, और फिर परीक्षित का जन्म होता है। और परीक्षित का जन्म जब होता है तो जन्म से ही वो दिव्य व्यक्ति जिसने भगवान का दर्शन गर्भ में ही कर लिया, जीवन भर ढूंढते रहता है तो वो व्यक्ति कहाँ है, इसलिए उसका नाम है परीक्षित। वो हर एक व्यक्ति जो उसको मिलता था उसकी परीक्षा करता था, कहीं ये वो तो नहीं, क्योंकि जब तक उसका जन्म हुआ तब तक भगवान अपने लीला समाप्त करके अंतर्धान हो गए। तो ऐसा दिव्य व्यक्ति था, उसके अंदर पांचों पांडवों के सभी सद्गुण थे, उसके अंदर सभी देवताओं के सद्गुण थे, वो शिव जी ब्रह्मा जी से कम नहीं थे, और भगवान के परिपूर्ण भक्त थे, वैष्णव थे। और ये परीक्षित जी ऐसे कहते थे कि परीक्षित के राज्य में कभी भी दिन में वर्षा नहीं होती थी, केवल रात में होती थी, और वहां पर होती थी जहां पर वर्षा की जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो लोगों की बस्ती में बाढ़ आ रही है, लोग बहते बह रहे हैं, गाय भैंस घर झोपड़ियां बह रही है, ऐसा नहीं। इतने साधु राजा थे वो, राज ऋषि थे वो, उनके राज्य में कुछ कमी नहीं थी किसी चीज की, हर चीज संपन्न था भी हर चीज की, और वर्षा हमेशा रात को और खेतों में ही हुआ करती। उनके राज्य में कहीं भी, उनका राज्य मतलब क्या, इंडिया नहीं या महाराष्ट्र नहीं, उनका राज्य पूरे विश्व का था। ही वॉज चक्रवर्ती सम्राट, चारों दिशाओं के सम्राट थे वो, पूरा विश्व के राजा थे वो। और उनके राज्य में कहीं भी कोने कोने में भी कोई व्यक्ति मांस नहीं खाता था, कोई भी व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता था, कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता था, और कोई व्यक्ति जुआ नहीं खेलता था। इतना राज्य उनका शुद्ध और पवित्र था। और उनके राज्य में उनके उनके वजह से, उनके भक्ति की वजह से इतनी पवित्रता छाई हुई थी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी पाप नहीं करता। तो ऐसे राजा एक दिन शिकार को निकलते हैं, और शिकार को निकलते हैं तो बड़े तो सिद्ध महात्मा थे वो, वैसे उनको प्यास, भूख और कोई सेक्स डिजायर या धन दौलत की इच्छा, पद की इच्छा ऐसे कोई ग्रस्त नहीं करती थी। तो सेवक के रूप में सेवा करते थे, इतना बड़ा साम्राज्य था फिर भी वो आसक्त नहीं थे उससे। और लेकिन भगवान की ऐसी योजना थी, दिव्य योजना थी, भगवान अंतर्धान अमीर भी हो चुके थे, अपने 125 साल की लीला समाप्त करके अपने गौरव धाम जा चुके थे। तो ये शिकार में एकदम प्यासे हो जाते, प्यास लगती जंगल में, ढूंढते जंगल में जाके तो उनको एक ऋषि का आश्रम मिलता है, शमिक ऋषि का आश्रम मिलता है। शमिक ऋषि उस समय तुल्यावस्था में थे, मतलब भगवान के ध्यान में मग्न थे, शरीर की सुध-बुध खुल कर दिव्य अवस्था में भगवान के साथ में जुड़े हुए लीला में मग्न थे, दर्शन कर रहे थे। तो एक बार पुकारते, महाराज जी प्यास लग रही है जल दो, महाराज जी को सुना नहीं पड़ता, बड़े मग्न थे वो। एक बार दो बार पुकारते हैं, अचानक जो अपने इंद्रियों पर पूर्णता काबू कर चुके हैं, काम करो दो बदमो मस्तर पर विजय प्राप्त कर चुके, ऐसे परिस्थित महाराज अचानक उनको गुस्सा आ जाता है, क्या समझते अपने आप को, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं और इनके कुटिया में आया हूं, पानी मांग रहा हूं फिर भी पानी नहीं दे रहे हैं, क्या समझते अपने आप को। ये समझकर ऐसे बोलते हुए, ऐसे सोचकर एक वहां पर सांप जो पड़ा हुआ है उसको उठाते हैं और अपना अपमान के रूप में इनके गले में डाल देते। हम लोग क्या करते हैं, फूलों की माला लेकर किसी का सम्मान करना है तो उसको माला पहनाते, लेकिन मरे हुए सांप को किसी गले में पहनाना मतलब बहुत बड़ा अपमान है। वो भी ऋषि है, शमिक ऋषि, परम सिद्ध ऋषि है। तो जैसे वो गले में हाँ सांप डालते हैं, उनका एक पुत्र है 7 साल का, 5 साल का, उसका नाम है श्रृंगी, वो भी ब्राह्मण है, बड़ा तेज वाला है, बड़ा सिद्ध पुरुष है, पावरफुल तपस्या का बल है उसके अंदर। वो अपने दोस्तों के साथ में थोड़ी अंतर पे गई, एक सरोवर है पानी का, वहां पे खेल रहा था। लेकिन जैसे ही सांप अपने पिताजी के पुत्र पिताजी के गले में पड़ता है तो उसको समझ में आता है, उसको ही अंडरस्टैंड्स बाय द पावर ऑफ ऑस्टेरिटी एंड प्यूरिटी कि मेरे पिताजी का किसी राजा ने अपमान किया है, और बिना कुछ सोचे कि वो कौन व्यक्ति है, क्या कारण था, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये कोई सार असार विचार न करते हुए, सद असद विचार न करते हुए तुरंत वो वहां पर दलील लेता है, एक धागा तोड़ता है और शाप देता है कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिता का सांप डालकर अपमान किया है वो 7 दिन में सर्प पक्षी के दंश होने से मर जाएगा। और वो इतना भयंकर शाप था कि उस सांप शाप के उच्चारण के ध्वनि से हाँ गड़गड़ाहट हो गई सब विश्व में, और उस गड़गड़ाहट से शमिक ऋषि का ध्यान भंग हो गया। तब तक शाप सुनकर परीक्षित महाराज जा चुके थे। अभी परीक्षित महाराज को शाप जो दिया गया था उसको काउंटर एक्ट करने की शक्ति उनके अंदर थी, ऐसा नहीं कि वो साधारण व्यक्ति थे, तो राजा थे और स्वर्गीय ब्राह्मण था, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण से कुछ कम थे, उनके अंदर उतना बल था, दिव्य बल था, शास्त्र का बल था, भक्ति का बल था कि उस ब्राह्मण के शाप को वो कैंसिल कर सकते थे, नष्ट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने विचार किया कि मुझे कभी भी प्यास भूख से मैं परेशान नहीं होता हूँ, निद्रा के वेग से परेशान नहीं होता हूँ, आज मैं कैसे प्यास के वेग से परेशान हो गया और मुझे गुस्सा आ गया और कैसे मैंने ये कृत्य किया। तो सोचते हैं कि ये भगवान की इच्छा होगी, इट मस्ट बी द डिवाइन डिजायर ऑफ माय सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा। इसलिए शाप मिलने के बाद में क्रोध न करते हुए शांति से अपने राजदरबार में चले जाते हैं। यहाँ पर शमिक ऋषि जग जाते हैं और देखते हैं, और उनको भी वो क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है सब कुछ समझ में आता है कि क्या हुआ, अपने गले में सांप देखते हैं सब कुछ उनको पता चलता है कि क्या हुआ है। अपने पुत्रों को बहुत डांटते हैं, वो समझता नहीं है कि वो कौन थे, मैंने उनका अपराध किया था, ये मेरा दोष था, मुझे दंड मिलना चाहिए था, तो उल्टा तुमने चक्रवर्ती सम्राट जो हम सबके पिता समान है, राजा जो हमारे पिता समान है, भगवान के प्रतिनिधि है, यू हैव कर्स्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, बहुत जघन्य अपराध किया। ऐसे कहते हैं कि
वहीं से कलयुग का आरंभ हुआ। ब्राह्मणों ने अपने बल का और शक्ति का जब दुरुपयोग किया, वहीं से कलयुग का आरंभ हुआ। शुरुआत थी श्रृंगे के द्वारा राजा परीक्षित को शाप देने की। परीक्षित चले गए राज्य में, और उस समय इतना बढ़िया समय था कि विश्व में जितने साधु थे कहां कहां दूर दूर, हिमालय में, विंध्या प्रचल में, सह्याद्री में, सब जगह पर थे। सब जगह पर आज कहते हैं उसको टेलीपैथी, हाँ, टेलीपैथी के द्वारा, अंतर ज्ञान के द्वारा सबको समझ में आया कि परम साधु राज ऋषि परीक्षित महाराज को मृत्यु का दंड मिला हुआ है, 7 दिन में उसकी मृत्यु होने वाली। और राजा भी दरबार में जाते हुए एक क्षण का भी विचार न करते हुए राज मुकुट उतार देते हैं, राज वस्त्र को उतार देते हैं, केवल कोपिन पहन के, हाँ, वो सोने के और रत्नों से मढ़े हुए रथ पर घुमा करते थे। पूरे विश्व का साम्राज्य उनका था, इतना पावर था उनके पास, इतना पद की शक्ति थी उनके पास। लेकिन ये उसका प्रूफ है, एक क्षण में उन्होंने सब कुछ, साम्राज्य, ऐश्वर्य, पद, शक्ति, बल, अधिकार सब त्याग दिया। इसका प्रूफ ये है कि वो उससे आसक्त नहीं थे। इतना सारा दौलत और साम्राज्य होने पर भी वो उस सारा साम्राज्य का युक्त वैराग्य के रूप में भगवान की सेवा में उपयोग करते थे, इसलिए उनको छोड़ने में कष्ट नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं किया, अरे 7 दिन बचे हैं, चलो वो कर लें, सब स्त्रियों को बुला लो, हम जो सुरा है मतलब दारू है उसको पीले पी लेंगे, आनंद लेंगे, अच्छा अच्छा भोजन करेंगे, 7 दिन बचे हैं खाली, जितना ऐश्वर्य है उसको भोग लेंगे, ऐसा नहीं सोचा। एक क्षण में उसको त्याग दिया और केवल कोपिन पहनकर राजा परीक्षित जो है गंगा नदी किनारे गए। हस्तिनापुर जो है बहुत विशाल था उसने, अभी तो दिल्ली हम समझते हैं, दिल्ली बहुत लिमिटेड है, लेकिन हस्तिनापुर जो है वो हरिद्वार तक फैला हुआ है, क्योंकि जो शुकताल नाम की जगह है जहाँ पर शुक्रदेव ने परीक्षित महाराज को भागवत सुनाया, वो हरिद्वार के पास है। उससे हम समझ सकते हैं कि उस समय का जो हस्तिनापुर था वहां तक फैला हुआ। तो गंगा किनारे आते हैं और वो गंगा किनारे पहुंचते पहुंचते ही हजारों साधु जो है अपने योग बल से वहां प्रकट हो जाते हैं। जैसे आप जानते हैं ना कुंभ मेला के अंदर नागावाड़ा होते हैं ना, कभी ट्रेन से नहीं आते, वो हिमालय में रहते हैं और वहां से नदी में प्रवेश करते हैं और त्रिवेणी में प्रकट हो जाते हैं। खाली नदी कनेक्टेड होनी चाहिए बस, नदी शुक्ला भी इंटरप्टेड है, तो वहां के गंगा में प्रवेश करते हैं और त्रिवेणी के गंगा में प्रकट हो जाते हैं और त्रिवेणी में स्नान करके वापस जल में प्रवेश करते हैं और फिर हिमालय में प्रकट हो जाते हैं। तो वैसे दिव्य साधु हुआ करते थे वो, सब लोग योग बल से वहां प्रकट हो गए हजारों हजारों की संख्या में। और वहां उसी समय जो मैंने पहले आपको वर्णन किया सुखदेव जी, वो भी वहां पर आ गए। जब वो वहां पर आ रहे थे तो कुछ लड़के और कुछ स्त्रियां उनको पत्थर फेंक रहे थे, क्योंकि वो निर्वस्त्र थे, तुरियावस्था में थे, अजीब लग रहे थे। जो सब स्त्रियां और बालक उनका मजाक कर रहे थे, उनको पत्थर फेंक रहे थे, उनका टीजिंग इन। लेकिन जैसे ही साधुओं की जहां पर इकट्ठा हुए हैं वहां पर वो आ जाते हैं, वहां पर नारद मुनि, व्यास देव, असिता, देवल्लभ, भरद्वाज, वशिष्ठ, वाल्मीकि सब बैठे हुए हैं। सब साधु केवल नारद मुनि, व्यास मुनि छोड़कर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। जब ये बालक और स्त्रियां ये देखते हैं तो भाग जाते हैं, देखो साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको इतने महामुनि जो है उनको प्रणाम कर रहे हैं। और इतने हजारों के साधु की संख्या में परीक्षित जी बैठ जाते हैं और सभी साधुगण जो है वो सुखदेव जी को नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं, हे सुखदेव जी, आप अभी व्यासपीठ पर बैठ जाइए, और बैठ जाते हैं, उनका पूजन होता है। और फिर सुखदेव जी को परीक्षित महाराज, जिनको 7 दिन के बाद में सर्प पक्षी द्वारा दंश होने से मृत्यु का दंड मिला है, शाप मिला है, वो परीक्षित महाराज नम्र होकर सुखदेव महाराज को प्रश्न करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए, वो क्या प्रश्न करते हैं। तो ये नहीं प्रश्न करते हैं कि 7 दिन में क्या क्या भोग ले लो, क्या क्या आनंद ले लो, बताओ 7 दिन कैसे बिताओ, वो नहीं देखते। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के सामने खड़ा है उसको क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है। और उस एक प्रश्न के उत्तर में सुखदेव महाराज ने 18,000 श्लोक वाला भागवत सुनाया मुझे। पूरा भागवत जो है उस एक प्रश्न का उत्तर है। What is the duty of a person who is standing in front of death? आप में से कितने लोग मृत्यु के सामने खड़े हैं? हाथ ऊपर दीजिए. एवरीबडी, एवरीबडी जो जन्म ले चुके हैं वो मृत्यु के सामने खड़े. हर एक उम्र जो है, हर एक समय जो है वो मृत्यु के लिए योग्य है. ऐसा कोई समय नहीं है जो उसमें मृत्यु नहीं होती. एवरी एज देयर इज डेथ. इसलिए श्रीमद् भागवत जो है ये सबके लिए अनुकूल है क्योंकि सब लोग मृत्यु के सामने खड़े. अभी व्यासदेव जी को ये जो आसन है नारद मुनि के सामने और व्यासदेव जी के सामने, वाल्मीकि के सामने, वशिष्ठ मुनि के सामने, भारद्वाज मुनि के सामने, ऐसे हजारों दिव्य मुनियों के सामने उनको नेता के रूप में क्यों चुना गया? इसका कारण एक ही है कि सुखदेव जी के मन में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं थी. देर वॉज नो मटीरियल डिजायर इन द हार्ट ऑफ सुखदेव. और साथ साथ उनके मन में कृष्ण के प्रति अति प्रेम था. कृष्ण के प्रेम और भक्ति में वो समरस थे, अति उत्कट अवस्था में थे और भौतिक दुनिया से उनको एक भी इच्छा नहीं. इसलिए उनके पिता के सामने, जिनसे उन्होंने भागवत सीखी थी, उनके सामने भी सुखदेव जी को सबने चुना. व्यासदेव ने ऐसे नहीं कहा अरे मैंने सिखाया उसको, तो मेरा पुत्र है, पूरा भागवत मैंने सिखाया उसको, तो उसको भी बिठा दे, मुझे भी जाना चाहिए. ऐसा नहीं कहा. क्योंकि कोई बड़ी उम्र से या पिता होने से, माता होने से श्रेष्ठ नहीं बनता. व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है भक्ति की प्रगति से. इसलिए सुखदेव जी ने दो बार व्यासदेव जी से भागवत सुनी थी, लेकिन इस बार व्यासदेव जी सुखदेव से मुख से भागवत सुन रहे. बड़ी दिव्य अवस्था है, बड़े डिवाइन सिचुएशन. कृष्ण स्वधामो अपगते धर्म ज्ञान दिवि सह तलो नष्ट दुषाम ऐश पुराण अर्को मनोजुष. इसका अर्थ यह है कि भगवान के स्वधाम उपगते, जब भगवान अपने स्वधाम में चले गए तो धर्म और ज्ञान सब साथ में लेके गए. लेकिन उद्धव जी ने उनके जाने के पहले उनका संवाद है, आप भागवत में पढ़ेंगे तो 11वें स्कंद में उद्धव जी का 12वें स्कंद में उद्धव जी का संवाद है. अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई तो बहुत टाइम, बहुत इमरजेंसी टाइम, बहुत कम था, युद्ध का समय था, दोनों पार्टी खड़े थे वहां पर, अर्जुन जी परेशान हो गए. तो बड़े कम समय में भगवान ने उनको ज्ञान दिया है भगवत गीता. लेकिन जो उद्धव जी को ज्ञान दिया है वो विस्तार में दिया है, भगवान को जल्दी में नहीं, रिलैक्स. तो उद्धव जी पूछते हैं कि आपने इतना मुझे ज्ञान दिया है, अभी आप जाएंगे, मैं देख रहा हूँ कि आपका समय हो चुका है, आप अपने धाम में पधारेंगे तो विश्व का कल्याण कौन करेगा? भगवान कहते हैं कि मेरे पश्चात श्रीमद् भागवत ही विश्व का कल्याण करेगा, मेरे पश्चात श्रीमद् भागवत ही मेरा रूप होगा. तो कहते हैं कलौ नष्ट दृशाम, कलयुग में सबकी दृष्टि जो है नष्ट हो जाएगी, उनको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा. उस समय पुराण अर्थो यानी हजारों सूर्यों जैसा प्रकाशित ये शास्त्र जो है श्रीमद् भागवत, ये विश्व को प्रकाश दिलाएगा. विश्व के घने अंधकार में, अज्ञान के घने अंधकार में ये हजारों सूर्य के समान प्रकाश देगा और ज्ञान का विकास करेगा और जीवों का उद्धार करेगा और सब जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र से बचाएगा. साथ में ऐसा है ना कि जो भारी कथा होती है ना तो वर्षा होती है. अभी आप भारी कथा भी करेंगे, वर्षा को रोकेंगे, कैसे चलेगा? यस, तो आगे कथा बढ़ाते हैं. सात दिन और सात रात परीक्षित महाराज ने सुखदेव के मुख से भागवत सुना और उसकी विशेषता यह है कि जो प्यास के द्वारा त्रस्त हो गए थे, क्रोधित हो गए थे, उन्होंने सात दिन ना जल पिया, ना भोजन किया, ना सोए, एक ही आसन में बैठे रहे वो सात दिन सात रात. और हमारे जैसे भागवत कथा नहीं होती है, शाम को दो घंटे, सुबह दो घंटे, बीच में विश्राम, भोजन, नाश्ता, जूस, सामने मृत्यु खड़ी थी। उन्होंने अपने योगिक बल से, भक्ति के बल से प्यास, भूख, निद्रा सब त्याग दिया और दिन रात श्रवण किया। और ऐसे नहीं कि पांच दिन हो गए तो फल तुम्हारा थक गए, बड़े बीते हो गए, कमजोर हो गए, नींद आ रही है उनको, तो समझ में नहीं आ रहा है, सुखदेव जगा रहे हमको, परीक्षित उठो उठो, दो दिन बाकी अभी, ऐसा नहीं। वो शरीर के स्तर से ऊपर उठ चुके हैं। सुखदेव महाराज के दिव्य भागवत की कथा से शरीर के बंधन से वो मुक्त हो गए और दिव्य अवस्था में, आध्यात्मिक अवस्था में वो भागवत सुन रहे थे। इसलिए जो कृष्ण भगवान की कथा आती है दशम स्कंध में आती है, वो अप्रोक्सीमेटली पांचवें दिन के एंड में और छठवें दिन की शुरुआत में हो गई होगी अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि वो दशम स्कंध के बाद केवल दो स्कंध है, 11 और 12। उनके अंडरस्टैंड की 6 और 7 दिन के अंदर भगवान की कथा आरंभ होगी। तो उस समय परीक्षित महाराज ऐसे प्रश्न करते हैं कि सुखदेव जी उनको अभिनंदन करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि आप इतने थक जाने के बाद भी हम 7 दिन के अंत में आ गए, 8वां दिन चल रहा है, दशम स्कंध चल रहा है, फिर भी आप थके नहीं हो, आपका उत्साह द्विगुणित त्रिगुणित हो रहा है, अनंत गुणित हो रहा है, और मल्टीप्लाइंगली एंथुजियास्टिक, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप न केवल सुन रहे हैं, न केवल ग्रहण कर रहे हैं, न केवल मनन कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न भी पूछ रहे हैं, हाउ इज दिस, हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, प्रश्न पूछ रहे हैं। शिशुपाल का जब वध हुआ तो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे हुआ, शिशुपाल इतना बड़ा राक्षस था तो उसके शरीर से जो ज्योति निकली वो भगवान के शरीर में विलीन हो गई, ये कैसे हुआ। तो पूरा फिर उन्होंने नरसिंह भगवान, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का पूरा आख्यान वर्णन किया। मतलब जो जो कथाएं प्रकट हो रही है वो परीक्षित महाराज के मोक्ष वृत्ति से प्रकट हो रही है, बिकॉज ऑफ ईगरनेस ऑफ परीक्षित महाराज, सुखदेव वॉज वेरी ईगरली डिस्क्राइबिंग ऑल द पास्ट। तो कथा का ये एक रहस्य है। कथा बहुत सुंदर तब होती है जब सब श्रोतागण बड़े उत्सुक होते हैं। अगर श्रोतागण उत्सुक नहीं होते हैं, सोच रहे हैं कब प्रसाद होगा, कितना टाइम हो रहा है, कितना नजबाफी हो रहा है, प्रभु जी इतने बोलते जा रहे हैं, तो कथा में आनंद नहीं आ रहा। आप सब लोग बड़े उत्सुक हैं, मुमुक्षु अवस्था में हैं और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए कथा करने का उत्साह, भगवान भी इंद्रदेव भी वर्षा करके रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये भागवत का एक रहस्यमय अंग है, तो सबको समझना जरूर है कि भागवत सुनने की क्वालिफिकेशन क्या है, उत्सुकता, इगरनेस, निरपेक्ष भाव, ना अन्न चाहिए, ना प्यार पानी चाहिए, ना मुद्रा चाहिए, केवल सुनना है बस। कर्ण के माध्यम से सुखदेव के मुख से निकलने वाला अमृत जो है वो ग्रहण कर रहे हैं, सुख मुख अमृत, सुख के मुख से जो राजा रानी के तोता है वो सुखदेव बनकर आए हैं। और भागवत का जो सुंदर फल है, ऐसे कहते हैं ना, जब कोई सुंदर मीठा फल होता है, जब तोता उसको चोट लगाता है तो और मीठा हो जाता है। तो भागवत का जो सुंदर मधुर फल है, परिपक्व फल जो वेदों के वृक्ष पर आया है, जब सुखदेव का मुख से प्रकट होता है तो और मीठा होकर प्रकट होता है। तो ये भागवत की महिमा अभी थोड़ा बताएंगे आपको। नारद मुनि एक बार यात्रा कर रहे थे, अभी ये भागवत जी का जो कथा है वो 7 दिन चली, और ऐसे बताया है, वर्णन ऐसे आता है कि 7वें दिन के पश्चात सर्प पक्षी आया, तक्षक नाम का। ये तक्षक जो था, इसकी भी कथा ऐसी है कि जब अर्जुन ने, जब दुर्योधन ने उनको वो दिया पांडव फल दिया, चलो भाई ले लो कुछ, तुम्हें जंगल का एकदम जिसमें उपज नहीं है, इसमें कोई कम नहीं है, ऐसा जमीन दे दिया, चीटिंग किया मतलब पूरा। तो भगवान ने अर्जुन को लेकर पांडव वन को जला दिया, अग्नि को भोजन कराया। तो जब पांडव वन को जलाया तो तक्षक एक नाग था, उसका नाम था, उसका नाम वो पक्षी भी था, सर्प और पक्षी भी साथ में था, उसका पूरा वंश वहां पर था। तो वो भागने लगा और भगवान के शरण में आया, उसको गुस्सा आया कि मुझे जलाया जा रहा है, जाके इंद्र के सिंहासन पर अपने आप को बांध दिया। इंद्र भगवान के आ गए, बचाओ, तक्षक ने मुझे घेर लिया है। तो भगवान ने तक्षक को जीवन दान दिया, मैं दानव भी वहां से प्रकट हो गया जीवन दान प्राप्त करने के लिए, भगवान ने उसको भी जीवन दान दिया और कहा कि जब मैं ये भूमि को अग्नि से जला दूंगा तो यहाँ पर सुंदर इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी बना देना, क्योंकि वो राक्षसों का आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट ऑफ डीमंस, मैं दानव, देवताओं का आर्किटेक्ट कौन है, विश्वकर्मा, तो दानवों का था मैं, ये मैं जो था वे रावण का ससुर था, आप जानते हैं, रावण की कन्या पत्नी की मंदोदरी, उसके पिताजी का नाम मैदा नाम है। एनीवेज तो ये तक्षक जो था उसको उसमें गुस्सा आया था, उसको बदला लेना था अर्जुन का, तो वो पक्षी के रूप में दंश करने के लिए आया। लेकिन सुंदर बात यह है कि भागवत का शुक के मुख से अमृत का श्रवण करके परीक्षित जी शरीर के बंधन से बहुत पहले मुक्त हो चुके थे, और जैसे ही भागवत समाप्त हुआ परीक्षित जी शरीर को त्याग करके वहीं से गोलोक को प्राप्त हो गए। विमान आया और उनको लेकर गोलोक धाम ले गया, और फिर शरीर जो वहां पड़ा था एज अ फॉर्मेलिटी तक्षक ने आगे दंश किया और उनका सो कॉल्ड तथाकथित वध हो गया। मतलब जो साप भी हुआ था दिया था श्रृंगी ब्राह्मण ने, वो भी भागवत के प्रभाव से प्रभावहीन हो गया, इट बिकेम इनइफेक्टिव। परीक्षित डिड नॉट डाई बिकॉज ऑफ द बाइटिंग ऑफ द सर्प पक्षी, परीक्षित अपनी इच्छा से श्रीमद भागवत का श्रवण करके दिव्य अवस्था में जाकर भगवान के प्रेममय होकर सीधे गौलोक धाम चले गए, और उनके शरीर को वेद आत्मा का प्रयाण होने के पश्चात केवल शरीर को एक फॉर्मेलिटी के रूप में दंश किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, श्रीमद भागवत का श्रवण करने से शरीर का बंधन नष्ट होता है, श्रीमद भागवत का श्रवण करने से भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रभाव नष्ट हो जाता है, और पंचम पुरुषार्थ प्रेम कुमार तो महान, जो भगवत प्रेम ये पंचम पुरुषार्थ का है, उसकी जागृति होती है, और जीव जो है किसी प्रकार के बंधन में लुप्त नहीं रहता, आदि भौतिक आदि दैविक आदि आत्मिक क्लेश से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के परे चले जाता है। ऐसे व्यक्ति के पीछे मुक्तियां हाथ जोड़कर भागती है, ऐसे कहा गया कि जो व्यक्ति मुक्ति के लिए भागते हैं मुक्ति उनसे दूर दूर भागती है, और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके पीछे छह मुक्तियां हाथ जोड़कर पीछे पीछे भागती है, और भक्त उनकी ओर मुड़के भी देखता है। श्रीमद भागवत का ये प्रमाण है, श्रीमद भागवत की और एक सुंदर कहानी है जो आपको सुनने में बड़ा आनंद आएगा। जब भगवान अंतर्धान हुए ना तो उन्होंने उद्धव से संवाद किया जो भागवत में उपस्थित है, तो उन्होंने उद्धव को आदेश दिया जब मैं चला जाऊंगा मेरी पत्नियां बड़ी व्याकुल हो जाएंगी, 16,108 पत्नियां द्वारका में सब व्याकुल हो जाएंगी, तब परीक्षित और तुम और वज्रनाम जो भगवान का ग्रेट ग्रैंडसन है, प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का पुत्र वज्रनाम, और प्रद्युम्न पुत्र है रुक्मिणी का, कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न तो कामदेव का अवतार था, और फिर प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध उषा का पुत्र वज्रनाम, तो वज्रनाम बड़ा भगवान का भक्त था, तो पुत्र भी था और भक्त भी था, तो वज्रनाम राजा परीक्षित को उन्होंने आदेश दिया कि मेरी पत्नियों को लेकर ब्रज में जाना है। तो सब पत्नियां रोते रोते ब्रज में आती, बड़ी ध्यान से कहा सुनिए बहुत सुंदर कथा है, ब्रज में आते जमुना जी को देखती है, तो जमुना जी भगवान की पांचवी पत्नी है, लेकिन वो ब्रजवासी पत्नी, बाकी सब पत्नियां ब्रज के बाहर की थी, एक पत्नी ब्रजवासी थी, और राधा रानी का अंश भी है, विशाखा देवी का विस्तार है, और जल के रूप में वहां पर रह रही है, अरे आनंद से उमड़ रही है वो। तो सब पत्नियां पूछती हम तो आपकी मतलब सौत है, अरे कृष्ण हम सब लोग आपकी सौत है, मतलब वी आर ऑल को वाइव्स, और हम सब रो रहे हैं भगवान के विरह में, और आप तो आनंद से उमड़ रही है, आपकी लहरें इतनी उमड़ रही है, क्या कारण है इसका? तो वो कहते हैं हम ब्रजवासी नहीं है, हम राधा रानी का अंश है, राधा रानी के संग में उनके साथ में होते हुए कोई विरह की भावना नहीं है, भगवान है और नहीं है फिर भी हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। ये बड़ी रहस्य की बात है, इस रहस्य को समझने के लिए आप कुसुम सरोवर जाना जो गिरिराज गोवर्धन के तले में है, वहां पर उद्धव जी आपको इसका रहस्य समझाएंगे। तो परीक्षित जी और वज्रनाथ जी 16,107 पत्नियों को लेकर, एक पत्नी वही है जमुना जी, 16,107 पत्नियों को लेकर गिरिराज गोवर्धन के तलेटी में पहुंचते हैं। वहां पर आप जानते नहीं होंगे शायद कि उद्धव जी संदेश लेकर आए थे कृष्ण भगवान का, क्योंकि गोपियां बड़ी व्याकुल थी, ब्रजवासी बड़े व्याकुल थे, तो उनको सांत्वना देने के लिए एक खत लिखते हैं भगवान और उद्धव जी को लेकर भेजते हैं। उद्धव बड़े ज्ञानी पुरुष थे, वो सोचते हैं कि मैं ज्ञान और योग के आधार पर इनका दुख दूर करूंगा, इनको योग सिखाऊंगा, लेकिन बड़ी लंबी कथा है उनका, तो ब्रज में बड़ी बड़ी कथा है, सुंदर कथा है। इन शॉर्ट कहा जाए तो उद्धव जी यशोदा मैया नंद महाराज गोपियां इनका प्रेम देखकर बड़े व्याकुल हो जाते हैं, मेरा ध्यान तो तुच्छ है, मैं तो सोचता था कि मैं सबसे भगवान के निकट हूं, भगवान के बैठता हूँ, उठता हूँ, खाना खाता हूँ, शिकार करता हूँ, राज दरबार में सलाह मशवरा करता हूँ, परामर्श देता हूँ, भगवान का सखा भी हूँ, सेनापति भी हूँ, चचेरा भाई भी हूँ, इससे ऊंचा कोई पद प्राप्त हो सकता है क्या? इतने भगवान का इतने संबंध है भगवान से और इतने निकट है कि हंसी मजाक, बिस्तर पर बैठना, खेलना झूलना, शिकार पे जाना, हर कार्य भगवान के साथ कर रहे हैं। कोई भक्त होगा तो ऐसी स्थिति की अपेक्षा करेगा कि मैं भी इसी अवस्था में पहुंच जाऊं, भगवान के इतने निकट पहुंच जाऊं। तो उसको एक थोड़ा सा गर्व था कि मैं भगवान के इतने निकट हूं और मैं इनको ज्ञान और योग के आधार पर इनका जो विरह है वो शांत करूंगा। लेकिन गौर से देखता है नंद महाराज को, यशोदा मैया को, राधा रानी को, गोपियों को, उनका संवाद होता है बहुत जगह पर, ब्रज में, उद्धव क्यारी में, नंद भवन में संवाद होता है, तो ये समझ जाता है कि मेरा ज्ञान इनके भक्ति के सामने कुछ भी नहीं है और मेरा पद भी इनके सामने कुछ भी नहीं है। मैं सोचता था कि मैं भगवान के इतने निकट हूँ, लेकिन मुझसे करोड़ों गुना नजदीक भगवान के ये है। भगवान से शरीर से दूर रहने पर भी आत्मा से भगवान के कितने पास में है, बिल्कुल नम्र हो गया। भगवान ने द्वारका की ज्ञान की शाला से, पाठशाला से उनको ब्रज की प्रेम की पाठशाला भेज दिया पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। He was graduate in द्वारका in ज्ञान एंड योग। Krishna wanted him to do PhD and post graduation, so he sent him to the University of Love of Vrindavan। तो एकदम वो सही भावना में आ गए, नम्र हो गए, वापस द्वारका में गए, पूरा वृत्तांत सुनाया उनको कि ब्रज में क्या क्या हुआ, गोपियां कैसी है, माता कैसी है, पिता कैसी है, सब वृत्तांत सुनाया और कह रहे कि मैं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? तो दोबारा ब्रज में जाऊंगा और तृण का पत्ता बनूंगा, घास बनूंगा, घास, उसको संस्कृत में कहते हैं गुल्मलता। तो क्यों? वो कहते हैं कि जैसे मैंने गोपियों का अवस्था देखी तो मैंने उनके चरणों की रज लेना चाहा। मैं द्वारका में बड़ा सेनापति बनकर वहां पर गया था, नम्र हो गया वापस जाकर, और मैंने मन में ठान लिया कि इनके चरणों की रज प्राप्त होगी तब मैं कुछ प्रेम का प्रकाश मेरे हृदय में होगा। लेकिन मैं सेनापति के रूप में हूँ और वो सभी गांव की लड़कियां हैं, उनको बड़ा संकोच होगा अपने चरणों की रज देने के लिए। तो उनको बिना संकोच से अगर रज देना है तो मुझे घास का पत्ता बनना पड़ेगा, क्योंकि तो घास के पत्ते पर वो बिना सायास बिना संकोच चल जाती है। तो मैं तपस्या करूंगा अभी घास का पत्ता बनने के लिए। तो भगवान के इतना निकट है, उतना उनका भगवान का संबंध है, भगवान का इतना प्रेम का निकट का संबंध है, तो योगी जन, ध्यानी, तपी सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं। और ये प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जो है तपस्या क्या कर रहा है? घास का पत्ता बनने के लिए। ये ब्रज है, दिस इज ब्रज भूमि। ब्रज भूमि समझना बहुत मुश्किल है। तपस्या कोई कब करता है? हाँ, कर्म कांड करता है, ज्ञान कांड करता है, योग कांड, अष्टांग सिद्धि सब क्यों करते हैं? भगवान का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए, भगवान के निकट जाने के लिए, भगवान जैसा शरीर प्राप्त करने के लिए, भगवान के लोक में रहने के लिए। और ये क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ उनको प्राप्त है, ऑलरेडी भगवान के निकट है, लेकिन तपस्या कर रहे हैं एक तुच्छ घास का पत्ता बनने के लिए, ताकि गांव की जो लड़कियां हैं वो उन पर चले, लेकिन उनके चरणों की रज प्राप्त होगी तो भक्ति और प्रेम का बीज प्राप्त होगा। इस भावना से उद्धव जी दोबारा ब्रज में गए, तपस्या किया। वहां पर एक उद्धव कुंड है, वहां पर उनका तपस्या स्थली है, और तपस्या करके आखिर में उन्होंने कृष्ण भगवान के अंतर्धान होने के बाद में तृण का पत्ते का स्वरूप प्राप्त कर दिया। आज भी वहां पर गुल्मलता उपस्थित है और निरंतर निवास करते हैं गुल्मलता के रूप में, और गोपियों के चरणों की रज प्राप्त करते रहते। तो ये सब रानियां जो है वहां पर आ गई, जहां पर गुप्त रूप में गुल्मलता के रूप में उद्धव जी विराजमान थे। तो भगवान की रानियों ने परीक्षित महाराज और बद्रनाथ के साथ में भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की पत्नियां तो बड़ी भगवान की प्रेमी पत्नियां थी, स्वकीय भाव में माधुर रस की आराधना करती थी वो, स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थी, राधा रानी का विस्तार थी वो, रुक्मिणी जी परम भाग्य लक्ष्मी थी। ऐसे दिव्य भक्तों ने जो भगवान की पत्नियां थी उन्होंने बहुत दिव्य संकीर्तन किया और वो नाम संकीर्तन के प्रभाव से उद्धव जी प्रकट हो गए, गुल्मलता के रूप से व्यक्ति रूप में आ गए। और सब पत्नियां रो रही थी भगवान की विरह में, तो उद्धव जी ने वहां पर कुसुम सरोवर के किनारे बैठकर, जो उद्धव कुंड के इस तरफ है, गोवर्धन के उस तरफ उद्धव कुंड है बोलते इस तरह कुसुम सरोवर है ना, बड़ी लंबी कथा है उसकी। भगवान ने अपने पैर से गड्ढा खोद कर जमुना जी को वहाँ आह्वान किया था, और फिर राधा रानी ने दूध में पड़े हुए फूल निकालकर उस जल में धोए थे, और भगवान ने उस फूल से राधा रानी के बालों का श्रृंगार किया। आमतौर पर फूल बिनकर माला बनाकर राधा रानी वो मालाएं कृष्ण को अर्पण करती थी। उस दिन उन फूलों को धोकर जमुना जी को आह्वान करके उस कुंड में फूलों को धोकर राधा रानी के बालों का भगवान ने श्रृंगार किया। उस स्थान का नाम है कुसुम सरोवर। उस कुसुम सरोवर के किनारे में बैठकर भगवान की हजारों पत्नियों ने श्रीमद् भागवत सुना। 30 दिन तक जो सुखदेव जी ने 7 दिन में किया था संक्षेप में, क्योंकि राजा परीक्षित के पास समय बहुत कम था, लेकिन विस्तार में बड़े प्रेम से उद्धव जी ने, जिन्होंने भगवान के मुख से उपदेश सुना था, भगवान का सानिध्य का अनुभव किया था, तृण का पत्ता बनकर प्रेम की प्राप्ति की, उन्होंने भगवान के पत्नियों के सांत्वना के लिए श्रीमद् भागवत सुनाया। क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है, स्वयं भगवान का व्यक्तिगत संघ है वो। इट इज अ पर्सनल एसोसिएशन ऑफ द फिजिक ऑफ कृष्णा। बाय हियरिंग श्रीमद् भागवतम वन कैन एसोसिएट विद द पर्सन ऑफ श्री कृष्ण। तो जैसे ही उद्धव जी ने भागवत कथा शुरू की, तुरंत ही भगवान के विरह का दुख समाप्त हो गया रानियों के मन में। विलाप करती हुई आई थी वो, लेकिन तुरंत ही भगवान के विरह का दुख जो है वो समाप्त हो गया, और आगे जाकर दुख की जगह पर आनंद प्रकट होने लगा, क्योंकि साक्षात भगवान का संग ध्वनि के रूप में उद्धव जी के मुख से उन्होंने अनुभव किया। तो भागवतम का जो ध्वनि है, जो श्लोक हम बोलते हैं, जो गाते हैं, वो सब साक्षात भगवान है, इसलिए वो सुनते सुनते ही रानियों का विरह समाप्त हो गया। भगवान के संग में जो आनंद प्राप्त किया करती थी, वो आनंद को अनुभव करने लगी वो। जैसे ही दशम स्कंध आरंभ हो गया, उनकी ही कथा आरंभ हो गई ना वो, ब्रज लीला के बाद में तो द्वारका लीला की कथा आती है, हस्तिनापुर लीला की कथा आती है, मथुरा लीला की कथा आती है, जब उनकी ही लीला का कथा शुरू हो गया, उद्धव जी बोल रहे हैं उनके बारे में कथा करो, तो आकाश में अपने गौलोक धाम के दिव्य स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया। मतलब मैं गौलोक धाम में कौन हूं, इसका दर्शन मैं खुद कर रहा हूं, इतनी शक्ति थी उद्धव जी के भागवत में। सभी रानियों ने अपने मूल स्वरूप को, सिद्ध स्वरूप को दर्शन किया, और 12वें संध का वर्णन समाप्त होते ही वो अपने सिद्ध स्वरूप में लीन हो गई और गौलोक धाम चले गए। आप समझ सकते हैं श्रीमद् भागवत कितना प्रभावशाली है। श्रीमद् भागवत ने भगवान की दिव्य पत्नियों का विलाप भी नष्ट कर दिया, उनको भगवान ना होते हुए भी भगवान के अस्तित्व का अनुभव दिया, आनंद का सागर में डुबो दिया, और अंतिम क्षण में श्रीमद् भागवत ने भगवान की रानियों का उद्धार करके वो गौलोक धाम में अपने मूल स्थान में वहां पर पहुंच गए। अभी पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत की महात्म्य की कथा आती है, बहुत सुंदर कथा है ये भी आप ध्यान सुनिए। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, आत्मदेव उसका नाम था, वो बड़ा संपन्न था, शास्त्र का बड़ा ज्ञान था, व्यवहार से बड़ा शुद्ध था वो, लेकिन उसको पुत्र नहीं था। तो एक ऋषि से मिले वो, उन्होंने कहा कि सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। तो साधु ने, वो त्रिकाल ऋषि था, ध्यान लगाया, देखा कि आत्मदेव को संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसके नसीब में नहीं, उसके कर्म के फल में आए नहीं। लेकिन आत्मदेव ने बड़े जिद की, आप तो महात्मा हो, आप क्या नहीं कर सकते। तो आत्मदेव का मन रखने के लिए उन्होंने मंत्र उच्चारण करके एक फल पैदा किया, और वो फल आत्मदेव को दिया, और कहा कि आपके पत्नी को इसको खिलाओ, यथावकाश को गर्भवती हो जाएगी और आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उसकी पत्नी जो थी उसका नाम था धुंधुली। तो धुंधुली का अर्थ मानो में क्या है, जो बड़ा पात्र होता है और खाली होता है बहुत ज्यादा आवाज करता है, उसका नाम है धुंधुली। आप में से कोई नहीं ना ऐसे, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। तो वैसे थी वो, बड़ी दुष्ट थी वो और बड़ी दुष्कर्मी थी, सद्गुण नहीं था उसके अंदर, ब्राह्मण से पत्नी होने पर भी उसके अंदर इतना अच्छा पति होने पर भी बहुत दुर्गुणी थी वो। तो क्या करती है, उसको गर्भवती बनने की इच्छा नहीं थी, कौन करेगा, 9 महीने का कष्ट कौन सहन करेगा, पेट में नहीं तो बच्चा घूमेगा। तो उसने अपने पति को चीट करके उस फल को गाय को खिला दिया अपने गौशाला में, और उसकी बहन गर्भवती थी। उस जमाने में पति पत्नी आज जैसे इतने संग में रहा नहीं करते थे, पति हमेशा भगवान के भजन मगन रहा करते थे। जैसे कि कर्दम मुनि थे, हाँ देवावती की पत्नी थी उनकी, उनका शरीर का संग नहीं होता था ऐसे जैसे आमतौर पर होता है, वो तो भजन में मगन रहा करते, और कभी कभार वह संबंध करके फिर उनको दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ करते। तो ऐसे ही आत्मदेव भगवान के भक्त थे, पुत्रों की प्राप्ति थी, उनकी इच्छा थी उनको, लेकिन भगवान के भक्त थे। उसने क्या किया, अंतापुर में अपनी बहन को बुला लिया जो गर्भवती थी, और अपने आप को ये नाटक किया कि मैं भी गर्भवती ऐसे पेट में लगाकर, और 9 महीने के बाद में जब उसकी बहन का बालक प्राप्त हुआ तो वो खुद ले लिया और पति को बताया कि ये मेरा पुत्र, ऐसे चिट्ठी किया। जब उसकी बहन को पुत्र हुआ तो उसने स्वीकार किया, उसका नाम रखा गया धुंधकारी, पत्नी के नाम के शब्दों का समन्वय उसके अंदर है, और यथावकाश उस गाय को भी गर्भावस्था हो गई और गाय के पेट से एक दिव्य बालक जन्म हुआ। तो मनुष्य का बालक था, केवल कान उसके गाय के थे, गोकर्ण उसका नाम, गाय के पेट से मनुष्य के बालक का जन्म हुआ। तो भी घर का ही बालक है, तो आत्मदेव ने दोनों को बड़े प्रेम से पाला। लेकिन धुंधकारी जो था वो इतना पापी था कि दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया, छोटे उम्र से ही, और गोकर्ण जन्म से ही तो ऋषि के फल का प्रभाव था, मतलब फल का वो फल था, ऋषि के आशीर्वाद का फल के रूप में उसका जन्म हुआ था। तो जन्म से ही सात्विक था वो, शास्त्र में उसको बड़ी रुचि थी, बड़ा व्रत था वो, प्रेमी भक्त था, बड़ा दयालु था, वो तीर्थ यात्रा करने जाता है। और यहाँ पर धुंधकारी जो है जो जवान होता है तो इतने पाप करता है, वेश्या गमन, नशा करना, जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, गौ मांस खाना, सब प्रकार के पाप करता था, और उसके पापों से और दुष्कर्मों से त्रस्त होकर आत्मदेव एक बार घर छोड़ के चले गए, क्योंकि गोकर्ण ने कहा कि पिताजी आप इंतजार में मत रहिए, आपका जीवन बर्बाद कर दें, आप तीर्थ यात्रा में चले गए। तो विरक्त होकर आत्मदेव चले जाते हैं, यथावकाश धुंधुली का भी देहांत हो जाता है, तो माता भी नहीं पिता भी नहीं, देखकर ये धुंधुकारी जो है 5 वेश्याओं को घर में लेके आता है भोग लेने के लिए, और 5 वेश्याएं रोज उस पर डिमांड कर रही है, ये चाहिए वो चाहिए, उसकी तृप्ति करने के लिए डकैती कर रहा है, कुछ खून खराबा कर रहा है, उसको लूट रहा है। और एक दिन धुंधुकारी का वो 5 वेश्याएं सब मिलकर गला काट देगी, क्योंकि उनकी इच्छाओं का वो पूर्ण नहीं करता। अब वेश्या तो पता है ना आपको, उसकी तृप्ति नहीं हो सकती, और वेश्या के संग में जो आता है उसका सर्वनाश निश्चित है। तो भोग लेने का प्रयास करता है और खुद की जान खो बैठा है, जैसे ही उसका वध होता है उस 5 वेश्याओं के द्वारा, तो जो धुंधुकारी है वो भूत बन जाता है। भूत का मतलब क्या होता है जानते हो, मनुष्य मतलब आत्मा का 2 शरीर होते हैं, एक होता है सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं पड़ता, जैसे कि मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 वस्तुओं से सूक्ष्म शरीर बनता है जो सबको है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। आपका मन कहाँ है तो आपको पता नहीं, लेकिन मन तो जरूर है, भावना से प्रकट होता है। बुद्धि कहाँ है पता नहीं, लेकिन बुद्धि जानते हैं आप उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो हो गया सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, और एक होता है स्थूल शरीर जो दिखाई पड़ता है, हाँ कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपका शरीर बड़ा है छोटा है, कोई जवान है कोई बूढ़ा है, वो पंच महाभूत से बनता है, 5 तत्वों से बनता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं, ग्रॉस बॉडी। तो इसका ग्रॉस बॉडी जो था स्थूल शरीर वेश्याओं ने काट दिया, तो सूक्ष्म शरीर लेकर आत्मा भटकती रही, और आत्मा विद सूक्ष्म शरीर उसको भूत कहते हैं। तो उसी समय गोकर्ण तीर्थ यात्रा से लौट के आया, गोकर्ण बड़ा सिद्ध आत्मा था, भगवान का भक्त था, तो उस अवस्था में सूक्ष्म मतलब अनसटल प्लेटफॉर्म सूक्ष्म स्तर पर उस भूत ने गोकर्ण से संपर्क किया। अब ये हमारे पास शक्ति नहीं है, लेकिन चूंकि गोकर्ण बड़े सिद्ध आत्मा थे, गोकर्ण ने इस आत्मा से उसकी पुकार सुनी, उसके दरवाजे पर आकर के सामने के पेड़ में बैठकर ये पुकारता था कि भैया मैंने बड़े पाप किए हैं, इसके फल के स्वरूप मेरा शरीर नष्ट हो गया है और मैं प्रेत बन गया हूँ, भूत बन गया हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा, आप भक्त हो भगवान के, आप तो मेरे लिए प्रार्थना करो और मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने संतों की सलाह की, परामर्श किया उनसे कि क्या किया जाए, मेरा भाई जो है वो भूत बनकर अभी तड़प रहा है। संतों ने उसको आदेश दिया कि श्रीमद् भागवत का पठन करो, इससे ये भूत की शरीर से मुक्त होकर भगवान के धाम में चला जाएगा। तो गोकर्ण ने अपने ही मुख से श्रीमद् भागवत कथा करने का आयोजन किया, तो संतों को बुलाया। तभी एक बांबू के बीच में वो गोकर्ण जो धुंधुकारी था, जो भूत के रूप में था, वो बांबू के बीच में आके वहां स्थिर हो गया। जिस बांबू को सात गांठों से डोरी से बांध के लटकाया था उस पर उसने प्रवेश किया और वहां रहकर कथाकार के बिल्कुल निकट रहकर उन्होंने सात दिन श्रीमद् भागवत का कथन सुना। एक एक दिन जब हुआ तो एक एक गांठ अपने आप छूट गई और सात दिन के पश्चात जब भागवत समाप्त हो गई, कथा समाप्त हो गई, तो वैकुंठ से विमान आया। उसमें वैकुंठ के विष्णु दूत आ गए, उन्होंने बड़े इत्मीनान से धुंधुकारी का स्वागत किया और भागवत सुनने से भूत का शरीर नष्ट होकर धुंधुकारी को दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, जो वैकुंठ का शरीर होता है, जिसको कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का शरीर भी सच्चिदानंद विग्रह है, लेकिन वो पूर्ण सच्चिदानंद विग्रह है और हमें भी वो आदि देह अवेलेबल है। जब हम सिद्ध हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, तो हमें भी वो शरीर प्राप्त होगा। तो भागवत की कथा सुनते ही धुंधुकारी को वो दिव्य शरीर प्राप्त हो गया और उस दिव्य शरीर में धुंधुकारी को लेके जाने के लिए विष्णु के दूत आ गए, विमान लेकर आ गए और उसको ले गए। उसको ले जाने के पहले धुंधुकारी जो सिद्ध हो चुका है, पाप मुक्त होकर सिद्ध देह प्राप्त कर चुका था, वो विष्णु के दूतों से प्रश्न करता है कि केवल मेरे लिए क्यों आया, कथा तो मेरे भाई जो बड़ा सात्विक है, भक्त है, पुण्यवान आत्मा है, उसने तो कथा की थी, उसके लिए विमान नहीं आया। और गोकर्ण प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन उससे मुझे प्रश्न आता है कि मैं तो भक्त हूं भगवान का, कथा मैंने की थी इसके उद्धार के लिए, लेकिन मेरे लिए या यहाँ बैठ के सुनने वाले किसी के लिए विमान नहीं आया और इसके लिए कैसे आया, ऐसे मन में उसके प्रश्न उठ रहा था जो मुख से धुंधुकारी ने विष्णु के दूतों से पूछा। तो उसने क्या जवाब दिया आप सब लोग ध्यान से सुनना, हमारे सबके लिए बहुत ही उपदेशात्मक है। उन्होंने कहा कि सब लोग ने कथा सुनी, लेकिन कथा सुनने के बाद जब विश्राम हुआ करता था तो सब लोग ज्यादा सोते थे रात को, इंक्लूडिंग गोकर्ण। लेकिन क्योंकि इस धुंधुकारी के पास स्थूल शरीर नहीं था, नींद कब आती है, जब ये शरीर होता है तब नींद आती है, भूख कब लगती है तो शरीर होता है तब भूख लगती है, प्यास कब लगती है जब गोश गुस्सा कभी आता है, जब शरीर का बंधन होता है तभी भूख प्यास नींद ये सब लगती है। उसके बाद तो शरीर नहीं था, उसको ना भूख थी ना प्यास थी ना नींद आ रही थी, तो वो रात भर अवेक होंगी, तो रात भर वो बैठकर दिन भर जो सुना था उस पर चिंतन और मनन किया जाता था। वट एवर ही हैज हर्ड थ्रूआउट द डे फ्रॉम द लोटस माउथ ऑफ गोकर्ण ही वाज मेडिटेटिंग एंड डीपली कंटेम्प्लेटिंग ऑन द मैसेज ऑफ व्हाट ही हैड हर्ड। इसीलिए उस चिंतन की वजह से उसके लिए विमान आया है और विमान उसको लेकर चला जाता है। फिर गोकर्ण साधु से सलाह करता है, कभी दोबारा भागवत करेंगे, उसी प्रेक्षक गणों को लेकर आएंगे और दोबारा भागवत करेंगे। और उस दोबारा के भागवत में ना गोकर्ण सोते हैं ना सुनने वाले सोते हैं, रात भर जगकर जो भी दिन में सुना था उस पर चिंतन करते हुए जगे बोलो सात दिन सात रात। और सातवें दिन के अंत में अनंत विमान आए और हर एक व्यक्ति को एक एक विमान में बिठाकर चार चार विष्णु के दूत सबको ले गए और स्वयं श्री हरि गोलोकेश्वर परम भगवान श्री कृष्ण एक अलग विमान लेकर आते हैं और उसमें गोकर्ण को बिठाकर गोलोक धाम लेके जाते हैं। और श्रीमद् भागवतम की आपके लिए संदेश क्या है इसके अंदर, जो भी सुनेंगे तो चिंतन करना, आप सो सकते हैं लेकिन लेकिन इसके बाद में इसके पहले जब भी आप कल आएंगे कल के दिन तक आप विचार कीजिए क्या क्या आपने सुना, क्या क्या आपके लिए मैसेज है उसके अंदर, क्या क्या जीवन में आपको उतारना है। इस तरह से आप सुनेंगे तो इस जीवन के अंत में आपके लिए भी मान आएगा, ये निश्चित बात है। ये मत समझना कि केवल गोकर्ण के लिए, धुंधुकारी के लिए और केवल परीक्षित महाराज का मान आया। श्रीमद् भागवत इतना प्रभावशाली है कि इस मनुष्य जीवन में श्रीमद् भागवत को जो हृदय से सुनेगा और इसके 18,000 श्लोकों में से एक श्लोक का एक चौथाई हिस्सा भी जीवन में उतारेगा, the message contained in 1/4 of one shloka of the 18,000 shlokas. If you apply to your life, at the end of this life, we will all go back to Godhead. सब लोग हम भगवान के धाम में चले जाएंगे. इसलिए श्रीमद् भागवत को अमलम पुराणम कहा गया है. धर्म प्रोजित कैतवत्र, इसके सामने कोई शास्त्र नहीं है, कोई अत्र कोई अन्यत्र शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं. किम गो परे ईश्वर, इस शास्त्र के होते हुए अन्य शास्त्रों की उपदेश की आवश्यकता ही क्या है, ऐसे भागवत का कहते हैं. He's saying there is no need of any other upadesh, any other verse, any other scripture, any other guidance except Srimad Bhagavatam. ऐसे कहा गया है कि अगर सारे वेद, सारे इतिहास, सारे पुराण, सारे उपनिषद अगर नदी में बह जाते हैं या जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक श्रीमद् भागवतम बचता है, तो कहते हैं कुछ नहीं नुकसान हुआ, नथिंग इज लॉस्ट. तो श्रीमद् भागवतम जैसे पेड़ का सारा जो सार है वो फल में प्रकट होता है. आप लोग आम का पेड़ की डाली खाते हो क्या? आम के पत्ते खाते हो क्या? नहीं खाते. आप आम का पेड़ का सार जो है आम के फल के रूप में ग्रहण करते हो. तो आम के पेड़ का जो अस्तित्व है उसका सार फल के रूप में प्रकट होता है. तो भागवत जो है वो अमृत है, अमृतमय फल है, वेदों के वृक्ष पर आया हुआ. तो वो ग्रहण करने से सारे वेदों का सार ग्रहण हो जाता है और वेदों की सेपरेटली जरूरत बस्ती भी नहीं. तो ये जीवन जो है मनुष्य जीवन, जो प्रश्न परिषद महाराज ने किया था कि जो मृत्यु के सामने खड़ा है उसका कर्तव्य क्या है, उसका उत्तर भी इसमें दिया है. और जो सबसे पतित जीव भी है उसके लिए भी इसमें गाइडेंस दिया गया है. अपने पापों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति को भागवत श्रवण करके प्राप्त कर सकते हैं. और जो परमहंस अवस्था में है, परम सिद्ध अवस्था में है भक्ति करके, उनके लिए दिव्य आनंद का अनुभव भी इसमें प्राप्त है. तो दिस इज अवेलेबल, दिस इज बेनिफिशियल राइट फ्रॉम द मोस्ट फॉलन पर्सन टू मोस्ट एडवांस पर्सन. भक्ति के मार्ग में जो नौ स्थितियां हैं और जो परम सिद्ध अवस्था में है, सभी लोगों के लिए ये भागवतम परिणाम कर रही है. इसलिए इसको परमहंस संहिता कहा गया. इट इज मेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल, देयर इज नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन वन सेंस. लेकिन अगर भागवतम का आपको पूरा रस ग्रहण करना है तो आपको पाप से निवृत्त करना होगा, मांसाहार छोड़ देना होगा, नशा करना छोड़ देना होगा, व्यभिचार करना छोड़ देना होगा, विवाह पाए संबंध नहीं रखना होगा, और किसी प्रकार का भगवान के दिए हुए प्रॉपर्टी से दांव पे लगाना नहीं आता, भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना. ये सब छोड़कर जो आप खाएंगे केवल राधा राधा कांत को, राधा कृष्ण भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में केवल वही ग्रहण करना है. नथिंग एल्स शुड गो अंडर योर थ्रोट. भगवान के भक्तों का सन करना है, भगवान के भक्तों के सन में भगवान के नाम रूप लीला धाम की महिमा को सुनना है, भगवान के भक्तों की सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है, हर पल भगवान की सेवा में रत रहना है. ऐसे जीवन चर्या में अगर हम भागवतम सुनते हैं तो हमें वही फल प्राप्त होगा जो परिचित को हुआ, वो कर्ण को हुआ, इंद्रकारी को हुआ और बाकी सब लोगों को. इतनी शक्ति इसके अंदर. और ऐसे कहा गया है नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी. भागवत का नित्य पाठ करने से श्री प्रभुपाद जी ने ऐसा क्रम चलाया मंदिर में कि रोज एक श्लोक पर प्रवचन मंदिर में होता है. इससे नियम से श्रीमद् भागवत के दिव्य ग्रंथ से एक श्लोक का श्रवण करते हैं, उसका विवरण और चर्चा होती है. उससे कहा गया है कि जितने अभद्र, जितने अशुभ, क्या कहते हैं उसको, पापी जो दुष्ट वस्तुएं हैं वो सब नष्ट हो जाती है. अभद्र है जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है. जितना भी अभद्र हमारे जीवन में है, जानबूझकर या अनजाने में हमारे जीवन में प्रवेश करता है, तो सारा अभद्र जो है श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से नष्ट हो जाता है. नित्यम भागवत सेवया, उसके दो अर्थ हैं. एक है श्रीमद् भागवत का श्रवण करना कान से, और नित्यम भागवत सेवया, जो भागवत पुरुष है जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसको भागवत कहते हैं. उस भागवत भक्त की सेवा करना मतलब गुरु महाराज संतगणों की सेवा करना, ये दो अर्थ इसके अंदर हो गए. नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके, जो भागवत में उत्तम श्लोकों का वर्णन दिया गया है. उत्तम यानी उत्तम, जो तम गुण से हमको उठाकर दिव्य गुण में स्थित करता है, ऐसे श्लोकों को उत्तम श्लोक कहते हैं. और भगवान का भी एक नाम है उत्तम श्लोक, जो ऐसे श्लोकों से इनका गौरव होता है वो है उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण. तो भागवत के दिव्य श्लोकों का श्रवण करने से क्या होता है, भक्तिर भवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी का मतलब क्या होता है कि जो कभी नष्ट नहीं होती है, इसकी केवल शुरुआत होती है, जो फलती है, जो फलती फूलती है और वो सिद्ध हो जाती है, ऐसी नैष्ठिकी अहितु की अप्रतिहता कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट डीप ग्रेव ऐसी भक्ति जो है वो भागवत सुनने से हृदय में स्थापित हो जाती है, प्रतिष्ठित हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में फिर माया प्रवेश नहीं करती। जो भागवत का आश्रय ग्रहण करता है उसके घर में भूत प्रेत वेताल नकली इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है वो कुछ स्पर्श नहीं कर सकते। इतना प्रभावशाली शास्त्र है, जैसे हमारे संप्रदाय में एक आचार्य हैं जिनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर, जो प्रभुपाद जी के गुरु जी के पिताजी थे और स्वयं भी गुरु थे। वो अपने पेशे से मैजिस्ट्रेट थे, अंग्रेजों के जमाने में ही वो मैजिस्ट्रेट, और वो इतने कुशल मैजिस्ट्रेट थे कि उन्होंने सोचा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, अभी मुझे काम नहीं करना है, भजन करना है भगवान का, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सेवा करनी है, भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, तो ये कोर्ट कचहरी मैं नहीं करूंगा, मैं मायापुर जाके निवास करूंगा। तब उनका कोर्ट कचहरी का काम कलकत्ते में हुआ करता और उस समय भारत की राजधानी, ब्रिटिशों की राजधानी कलकत्ता में थी। तो ये इतने कीमती व्यक्ति थे कि ब्रिटिशों ने उनके मायापुर के घर तक रेलवे लाइन खींची, कलकत्ता से उनके घर के दरवाजे तक। किसी की घर के दरवाजे में रेलवे लाइन आती है क्या? घर के दरवाजे में, एक्चुअली घर से बाहर पड़ती है रेलवे लाइन। क्यों? रेलवे में एक इंजन और एक बोगी, पैसेंजर ओनली वन, ठाकुर भक्ति के बाद, क्योंकि वो दे वांटेड हिम टू कम टू वर्क। और चार घंटे में 16 घंटे के केसेस निपटाते थे और रोज कलकत्ता से गोद्रुन द्वीप में उनके घर पर रेलवे आती थी, उनको लेकर जाती थी और वापस आती थी। और चार घंटा काम करके बाकी सारा घंटा वो भजन पूजन कविता लेखन लेख लेखन शास्त्र लेखन करते थे, लोगों को प्रचार करते थे। तो ये भक्ति विनोद जब मजिस्ट्रेट थे तो एक वहां पर आतंकवादी, मतलब उस समय के आतंकवादी ऐसे नहीं थे आज जैसे बॉम्ब वाले, वो साधु तांत्रिक हुआ करते। तो एक तांत्रिक आया, उसका नाम था ऋषिकिशन। तो इस ऋषिकिशन ने क्या किया, लोगों को बहकाने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी सिद्धियों के द्वारा उन्हें बहुत बल प्राप्त किया, तंत्र का बल। तो बड़े बड़े बीमारियों को उसने हाथ लगा के ठीक कर दिया, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसा ऐलान कर दिया कि मेरे सिद्धि के बल से, तंत्र के बल से मैं अंग्रेजों को भगा दूंगा भारत से। बहुत उसके अनुयायी हो गए, लेकिन साथ साथ वो उस गांव की स्त्रियों को भी दूषित करता था, मॉलेस्टिंग विमेन, मतलब ढोंगी बाबा था वो। लेकिन ऐसे प्रभाव से लोगों को उसे प्रभावित कर दिया था। तो जैसे उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं अंग्रेजों को तंत्र की शक्ति से भगा दूंगा, तो अंग्रेज गवर्नमेंट भी अलर्म हो गई और उन्होंने सोचा कि कांटा जो होता है वो कांटे से ही निकाल सकते हैं। इसी देश का ये साधु है, इसी देश का ये मजिस्ट्रेट भी है, तो उसको ही लगा देते हैं इसके पीछे। तो ब्रिटिशों ने आदेश दिया ठाकुर भक्ति विनोद को, मजिस्ट्रेट को, इसका इलाज करो, इसको ठीक करके अरेस्ट कर दो। तो उसके बालों में बहुत शक्ति थी, उसके बाल से बाल निकाल कर वो मंत्र बोलकर बहुत भयंकर कार्य करता, अग्नि से चलता था, क्या क्या नहीं करता, बहुत भयंकर था। लेकिन धीरे धीरे वो लोगों को कहने लगा कि मैं भगवान हूं, मेरा पूजन करो। तो ठाकुर भक्ति ने सोचा कि ब्रिटिशों का आदेश तो है ही, लेकिन उसके अलावा मेरे लिए जो इंटरेस्ट ये है कि भगवान जो है वो ऐसे भोंदू बाबा नहीं होते हैं, तो लोगों को अज्ञान के प्रभाव से मुक्त करना मेरा कर्तव्य है भक्त होने के नाते। इसलिए ब्रिटिशों का आदेश था, फिर भी वो अपनी मोटिवेशन से वहां चले गए। जैसे चले गए तो मन के भावना को पढ़ने वाला था उसको वो सिद्धि प्राप्त थी। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर वहां पर आ गए तो ऋषिकेश ने कहा, मैं जानता हूं तुम यहां पर क्यों आए, तुम मेरे पद को भ्रष्ट करने के लिए आए हो, मुझे यहां से भगाने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, मेरे के बालों के मंत्रों से मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से नष्ट कर दूंगा। और अचानक ठाकुर भक्ति विनोद के घर में बहुत सारे बच्चे थे, 10 बच्चे थे, पत्नी थी, सब लोगों को इतना भयंकर टाइफाइड हो गया कि सारे लोग बिस्तर पर आ गए, ठाकुर भक्ति विनोद को भी टाइफाइड का असर हो गया, इतना उसके अंदर बल था। सब लोग डर गए, बोलने लगे इनको छोड़ दो, आप इनके पीछे मत पड़ो, ये तो बहुत सिद्ध बाबा है, आपको कुछ भी कर सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरी जान चली जाएगी लेकिन इसका भांडा मैं फोड़ दूंगा जरूर। उन्होंने पुलिस को इकट्ठा करके बोला इसको अरेस्ट करो, पुलिस को अरेस्ट करके हिम्मत नहीं कर रहा। तो जैसे उनको हाथ लगा देते इसके सर से, वो कहते ना क्या बोलते स्पार्क्स फूड का पाओ, चिंगारे निकलते इसके सर से, तो कोई छूने को तैयार नहीं था। तो आखिर में वो बार्बर को लेके आए, तो कोई बार्बर उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं, ना ही एक बार्बर को बहुत बता बता के तैयार करके ले गए और सब उसके बाल काट दिए गए। जब बाल काटते समय उसके बालों से कई चिंगारियां निकली, बहुत भयंकर अनुभव हुआ। लेकिन भक्ति ठाकुर ने बीमार अवस्था में खड़े होकर इसके बाल कटवाए। बाल काटते ही ऋषिकेशन जो है वो एकदम बेहोश सा होकर गिर गया। उसके पहले ठाकुर भक्ति विनोद ने वहां बैठकर श्रीमद् भागवत का पठन किया। ठाकुर भक्ति विनोद को भूत बाधा करने के लिए इसने मंत्र बोलकर भूत भेज भेज दिया उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन ठाकुर भक्ति विनोद ने वहां बैठकर श्रीमद् भागवत का पठन किया और किसी भी भूत के ऊपर प्रभाव नहीं हुआ। उसके बाद में श्रीमद् भागवत के ही बल से उस राक्षस ऋषिकेशन के बाल काटे गए और ये बल बाल का जाते ही उसका देहांत भी हो गया और सब लोगों को ध्यान में आया कि ये कोई भगवान वगैरह नहीं था, भगवान तो श्री कृष्ण है। और समाज को अज्ञान के प्रभाव से ठाकुर भक्ति विनोद ने बचाया। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत ऐसा सुंदर ज्ञान है कि जब भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, स्वयं कृष्ण अपना ही भक्त बनकर आए, भक्त अवतार कहते हैं उसको, अपना ही भक्त बनकर मेरी भक्ति कैसे की जाती है वो सिखाने के लिए स्वयं कृष्ण भक्त बनकर गुप्त रूप में छन्न अवतार में आए। और उस अवतार में जो जगन्नाथपुर में रहते थे तो राधा रानी के जो अवतार हैं गदाधर पंडित, वो बड़े श्रीमद् भागवत के आचार्य थे। गदाधर पंडित के मुंह से जगन्नाथपुरी में छोटा गोपीनाथ के मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु हर रोज श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। एक एक लीला श्रीमद् भागवत की 300-300 बार सुनते थे और नृत्य करते हुए आंखों से अश्रु रहते हुए सुना करते थे और आनंद से मशहूर हो जाते। स्वयं कृष्ण भगवान ने जिनके बारे में श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में वर्णन है वो स्वयं जब भक्त रूप में आते हैं तो वो स्वयं भी गदाधर पंडित राधा रानी का जो अवतार है उनके मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, वो भी रोज 3 घंटा। सवेरे जगन्नाथ दर्शन करके वो ठाकुर हरिदास को मिलते थे, उसके बाद में दोपहर को भोजन करने के बाद में गदाधर पंडित के मंदिर में छोटा गोपीनाथ के मंदिर में आते थे और पूरी दोपहर 3 घंटे तक गदाधर पंडित के मुंह से प्रहलाद लीला ध्रुव लीला 300-300 बार सुनते थे। अपने जीवन में दिखा दिया श्रीमद् भागवत का कितना श्रेष्ठ शास्त्र। तो ऐसे सुंदर श्रेष्ठ शास्त्र के बारे में अभी हम अधिक मास के अगले 5 दिनों में एक एक लीला लेकर चर्चा करेंगे। ये सब बताने का मैंने क्यों प्रयास किया आपको कि जब तक हमें समझो कोई हीरा प्राप्त हो रहा है, लेकिन हीरा अगर बच्चे के हाथ में दिया तो फिर वो गेंद के रूप में खेलेगा उसको, है ना। एक बार ऐसे ही प्रश्न किया गया कि ये भगवान का नाम जो है वो दिव्य मणि के रूप में कहा गया है, उसे भगवत प्राप्ति होती है ऐसे कहा गया है। लेकिन मैं देखता हूँ तो हमारा तो चमार जो वो भी लेता है उसको, और धोबी की जो औरतें हैं वो भी लेती है उस नाम को, और रिक्शा वाला भी लेता है और बच्चे भी लेते हैं, तो क्या उनका सबका तो पूरे उद्धार हो रहा है। तो फिर वो नाम दिया गया, एक हीरा दिया फिर साधु ने, तो बच्चों को दिया तो बच्चे तो गेंद से खेलने लगे, औरतों को दिया तो वो उसको होता ना वो कपड़ा धोने के लिए उसका इस्तेमाल किया। ऐसे कई लोगों ने कई इस्तेमाल किया क्योंकि हीरे की महत्ता, हीरे का जो महात्म्य था वो उनको बताएं। बच्चों को लगा गेंद अच्छी है, औरतों को लगा साबुन वो था ना ब्रश कपड़ा था वो अच्छा है, पत्थर से घिसते कपड़े को गेंद को अच्छा पत्थर है, सख्त भी है चमकदार भी है। तो साधु ने बताया कि हीरा जब तक उसकी महिमा पता नहीं चलती है तब तक उसका पूरा लाभ नहीं होता। तो अगर श्रीमद् भागवत हुए था मनोरंजन के रूप में सुनेंगे, एंटरटेनमेंट के रूप में सुनेंगे तो वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, केवल मन का मनोरंजन होगा और आत्मा को कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन इतना सारा महात्म्य सुनाया इस उम्मीद से कि आप लोग अगले 5 दिन में जो भागवत के विषय हम लोग यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे वो सब उस भावना से सुनेंगे कि ये कथाएं सुनने से हमारे जन्म मृत्यु के बंधन नष्ट हो सकते हैं। एकाग्र मन से सुनेंगे तो प्रेम भक्ति का उदय हो सकता है, श्री कृष्ण भगवान की अनुभूति हो सकती है, श्री कृष्ण भगवान के देवों में प्राप्ति हो सकती है, उनके चरणों में जीवन लीन हो सकता है, सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो, जैसे भगवान की पत्नियां भगवान के विरह में जो विलाप कर रही, दुख कर रही थी, वो सब दुख मुक्त हो गए। परीक्षित महाराज भी मुक्त हो गए अपने श्राप से, श्राप का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, उसके पहले ही वो मुक्त हो चुके थे, भगवत धाम जा चुके थे। इतना बड़ा पापी धुंधुकारी, इसने जीवन में कोई अच्छा काम किया ही नहीं, इतना बड़ा पाप होने पर पाप के कारण उसका वध हुआ, उसका खून किया गया, वो गोकर्ण जैसे प्रामाणिक भक्त के मुख से श्रीमद् भागवत सुनने से पाप से मुक्त हो ही गया, प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई भगवान के लिए, और साक्षात विष्णु लोक से उसके लिए वैमान आया और विष्णु लोक में चले गए 7 दिन के अंदर। तो हमारे जीवन में भी ये क्रांति हो सकती है। सो प्लीज डू नॉट लिसन टू दिस कथा एज एंटरटेनमेंट, उसको भगवान के दिव्य भक्ति का एक दिव्य मार्ग समझ कर आप श्रवण करना। इस तरह से आना कि आपको नींद ना आ जाए, इस तरह से आना कि आप चुस्त रहें, इस तरह से आना कि उत्साही रहें, अपनी आत्मा को कान में लेकर आप बैठ जाना। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम तो इतने शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन प्रामाणिक वजह से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जितना आचार्यों ने समझाया इसके बारे में, वो सब पढ़कर समझकर आपको समझाने का बताने का प्रयास करेंगे, ताकि हम सब लोग अधिक मास में इतने सुंदर समय पर जो 3 साल में एक बार आता है भागवत का श्रवण करेंगे, हरि कथा श्रवण करेंगे, तो उसी जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करके भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाए। बोलो श्रीमद् भागवतम की
जय,
परीक्षित महाराज की
जय,
सुखदेव जी महाराज की
जय,
नारद मुनि जी की
जय,
ताई गौर प्रेमानंदे श्री राधा राधा कांत भगवान की
जय।
थैंक यू वेरी मच, वेरी मच।